के इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व के आप सब हम लोग गुरु तत्व को समझना चाहेंगे कल्याण हेतु, स्वयं के कल्याण हेतु। दूसरा आज कुछ प्रकाश डाला जाएगा। हमने सोचा कि क्या संदेश दें, तो मन में आया कि केवल जो हमारे आश्रित जन है केवल उन्हीं के लिए ही हमारा संदेश हो। जो संत जन पूरे समाज के लिए संदेश देते हैं उनको भी हमारा नमन है, परंतु हमारा ये मानना है कि एक भक्त को बनाने के लिए भी यू हैव टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड, एक भक्त को बनाने के लिए भी गैलन्स ऑफ ब्लड स्पेंड करना पड़ता है। तो जो हमारे आश्रित जन है हम ये चाहेंगे कि वो भक्ति में उन्नत से उन्नतर वर्षा प्राप्त करते रहे। इसी बात को आप सब आश्रित जनों के कल्याणार्थ हम आज का सत्र रखेंगे। गुरु पूर्णिमा केवल गुरुदेव का उपासना का पर्व या तिथि नहीं है, ये पूरी गुरुवर्ग की उपासना की तिथि है। और हमारे यहाँ जो गुरुवर्ग हैं उसमें हमारे गुरुदेव श्री श्रीकानंददास बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री श्री तो यही वो बेड है जिसमें कई डेकेड्स कई दशक श्री श्रीपंत बिहारदास बाबा जी महाराज ने विश्राम किया। यही वो बेड है उसके बाद पंत बिहारदास बाबा जी महाराज और श्री श्री आनंददास बाबा जी ने कई डेकेड्स तक इस बेड पर विश्राम किया। तो अब करीब एक डेढ़ दशक से ये जो बेड है इस पे हम भी कुछ विश्राम करते हैं। तो इस बेड के दर्शन करने से ही आपको गुरुवर की कृपा दर्शन मात्र से प्राप्त हो रही है। तो आज के दिन आप यही सोचें कि सभी गुरुवर जो हमारे कम से कम तीन जो गुरुवर हैं वे हमारे इसी स्थान से यहाँ पर उनका निवास रहा है, इस तत्व में उनका निवास रहा है, आगे जाने किस भाग्यवान को ये तक प्राप्त होगा। तो उसके बाद वह चौथी पीढ़ी हो तो आने वाले जनरेशन भी इन इस गुरुवर की कृपा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे केवल दर्शन मात्र से। तो आज हम प्रारंभ करेंगे आपको कथा का वर्णन करके। कुछ समय पुरानी ही एक घटना है, एक भक्त थे वृंदावन में, वह मंदिर में पुजारी थे और वह रोज पूजा करते थे ठाकुर जी की। और उनके गुरुदेव जो थे उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था और लगभग डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब गुरुदेव का शरीर छोड़ने का समय निश्चित है। तो उनकी भी इच्छा हुई कि जब तक गुरुदेव शरीर में कुछ क्षण और हैं, तो कुछ क्षण जो हैं जब तक गुरुदेव का प्रयाण नहीं हो जाता तो मैं गुरुदेव के साथ में समय व्यतीत कर लूं, क्योंकि गुरुदेव बिल्कुल जाने वाले हैं। तो वह आए पूजा छोड़ के, अपने किसी और जन को पूजा दी, वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की, वो अपने गुरुदेव के पास है, वो ही वृंदावन में ही रहते अलग स्थान। तो गुरुदेव के पास जैसे ही आए तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप जहां आए हो ठाकुर जी की पूजा कौन बोल रहा है। उन्होंने बोला अमुक कर रहे हैं। और उनके यहां ऐसा होता कि एक दिन कोई और करते थे, कोई और, फिर कोई और, या किस प्रकार से एक समय होता था कि कभी कोई करते थे कभी कोई करते थे। तो उन्होंने बताया कि बोलते आज उनकी बारी है, आज मेरी बारी नहीं है, तो मैं आज वो पूजा कर रहे हैं इसलिए मैं आया। तो मैंने कोई भी पूजा करा तो उसको छोड़ो तुम जाओ पूजा। वो हैरान होने, मैं तो गुरुदेव के पास प्रयाण काल तक रुकने के लिए मैं गुरुदेव जा रहे हैं फिर भी मुझे कह रहे हैं तुम छोड़ो मुझे और तुम जाओ पूजा करने, जबकि मैं बता भी रहा हूं कि गुरुदेव कोई बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव का नहीं आप जाइए। वह वापिस चले गए क्योंकि गुरु आगे आओगे, जबकि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अंतकाल तक रहें। तो वह चले गए और सुबह वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। उसके बाद वृंदावन में छोटा सा गांव है, तो सुबह पूजा करी, चरणामृत दिया, 7:30 बजे का समय था, तो सब चरणामृत करके चले गए, मंदिर खाली हो गया। तो फिर अचानक वो देखते हैं ठाकुर जी के प्रांगण में एक बहुत बड़ा विमान आता है, कपड़ा भी मांगते हैं। उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चतुर कुमार जैसे सरल सरंदा ने किया भी वो भी हैं और बहुत ही फूलों से सजा हुआ है, बहुत ही भव्य विमान है। उसमें भी गुरुदेव भी विमान से उतरे आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणामृत किया, अपने सिर पे हाथ लगाया, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा, और पुजारी जी को बोला, पाठक जी को, कि आप अच्छे से पूजा करना, और ये बोला और विमान पे बैठे और अंतर्धान हो गया विमान, तो सब कुछ अंतर्धान हो गया पूरा दृश्य। और वो पुजारी जी इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, उनकी इच्छा तो बहुत ही गुरुदेव को उठूं, प्रणाम करूं, बात करूं, बोलूं, कुछ करूं, पर उस तब अवस्था में थे कि वो कुछ कर नहीं पाए। तो अचानक थोड़ी देर बाद लोगों का आना शुरू हो गया कि तुम्हें पता है क्या हुआ, क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ बताया कि ऐसे गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो गुरुदेव विमान पे आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी, चरणामृत भी लिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, कैसी बेकार की बात है, गुरुदेव को तो गुरुदेव ने सुबह सुबह शरीर छोड़ दिया था 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 7:30 के करीब आए हैं हमारे यहाँ पे गुरुदेव, तो सभी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो फिर जो महत जयंत था उन्होंने यही बताया कि तुम्हारी बहुत इच्छा भी थी, इच्छा थी कि गुरुदेव के अंतिम क्षण में दर्शन करना चाहते थे, गुरुदेव ने तुम्हारी ये इच्छा इस प्रकार से पूरी करी कि धाम जाते जाते भी, धाम गमन करते करते भी तुम्हारे आए, तुम्हारे को दर्शन दिए अच्छे से और फिर उसके बाद धाम गमन किया। यदि आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, गुरुगत प्राण होते हैं जिन शिष्यों के, उनपे किस हद तक गुरु कृपा करते हैं ये कल्पना के परे है। यदि कोई सामान्य शिष्य होता तो उसके मन में आता जब गुरुदेव ने बोला कि नहीं तुम जाओ और पूजा करो ठाकुर जी की, तो उसके मन में आता कि जब कोई वो पूजा कर रहा है तो पूजा एक ही व्यक्ति ने करनी है और मुझे क्यों भेज रहे, ये तो बहुत पार्शियलिटी है। आज तक का कलयुग है ना, कलयुगी दिमाग है, कलयुगी बुद्धि है, मटेरियल माइंड है, तो वो अध्यात्म की बात को गुरुदेव के मन में हृदय में क्या चल रहा है कभी पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। ये नहीं कि ये बात, कोई भी बात नहीं जान सकता, हम जानते हैं संभव नहीं है एक सांसारिक जीव के लिए गुरुदेव क्या सोच रहे हैं वो कभी समझ ही नहीं सकता। वो दिव्य धरातल पे सोच रहे हैं और हम भौतिक बुद्धि से उसका माप तोल करते हैं, तो समझना संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति सामान्य जो शिष्य होता है वो यही गलत बुद्धि जो बहुत पार्शियल है, उनको तो बुलाया बिठाया हुआ है कृष्णदास को, रामदास को, श्यामदास को, मुझे ही मिल गया, गुरु जी लगता है मुझे पसंद नहीं करते, बहुत पार्शियल है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तो ये सोचे कि ये बात बोलना, ये बात विचार भी में आना, ये इस बात को विचार में आने से ही भक्ति का सर्वनाश हो जाता है साधक का, चाहे कितनी भी सेवा कर रहे हो। अब आप पूछेंगे क्यों सर्वनाश इसलिए होता है, क्योंकि गुरुदेव ने तो मनुष्य को दिया गई, ठाकुर जी स्वयं कह रहे आचार्य माम विचार आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, ना अवमान्य करिए, कभी उनकी अवमानना मत करो, कभी उनको मनुष्य रूप में उनकी गणना मत करो। जो गुरुदेव को एक मानव मानता है कि जैसे मैं भी मानव, जैसे सामने वाला भी मानव, बाएं दाएं वाले भी मानव, तो जैसे गुरुदेव भी मानव, ऐसा जो व्यक्ति है वो नारकी मती, नारकी मतलब हेलिश मेंटेलिटी, नरक गामिनी बुद्धि वाला होता है। भक्ति बहुत समझ के ध्यान से चलने का विषय है। अध्यात्म मन में बात भी आना, यदि बात भी आ गई मन में या पार्शियलिटी करा या मुझे क्यों नहीं, उनको क्यों, ये तो गलत है, और भक्तों से बात करी, मैंने तो ऐसे बोला था कि गुरु जी ने ऐसा बोला, ये बात करना तो छोटा, बात विचार भी आई तो गलत, बात कर ली किसी और से तो और महागलत, क्योंकि हम असत्संग कर रहे हैं स्वयं असत वृत्ति का, और वाला सत्संग करवा रहे हैं। तो गुरु के किसी भी निर्णय में यदि कोई अपनी गोती लगाता है तो उसको सामान्य मानव मान रहे हैं गुरुदेव को, और सामान्य मानव मानते ही हमारी भक्ति उसी समय स्वाहा हो जाती है। मंत्र में सिद्धि हमें स्वाहा से नहीं, स्वाद वाले मंत्र से नहीं मिलती, पर ये बिना मंत्र करे हमें स्वाहा हो जाती है हमारी भक्ति, पूर्ण रूप से स्वाहा। जो गुरु के मुख पे ब्रह्म ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर में स्वयं है, भक्त मान लो तो समझ लो कि गुरु के मुख पे ईश्वर बैठे। हरि जब तक किसी पे करुणा ना करे तो हरि को कोई जान नहीं सकता, और हरि को कोई जाने किसी रूप में हरि ही स्वयं गुरु के रूप में आते ताकि वो स्वयं को जना सके। इसलिए बोला जा रहा है कि गुरु के मुख पे ब्रह्म है, जबकि गुरु साक्षात हरि, शिष्य के लिए गुरु साक्षात हरि। यदि ये विचार भी आ गया ऐसे क्यों किया, मेरे को तो जाना ही था, मैं तो नहीं जाऊंगा, जैसे कि गुरुदेव किसी बोले आप नगरी परिक्रमा मत जाइए, उन्होंने मेरे को तो जाना ही है, मैं तो जरूर जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये मर्त्य बुद्धि आ गई, तो इससे सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम गुरु के मुख की तो खाते हैं, गुरु ने कुछ बोल दिया, वचन दे दिया, उसको जो पालन करता है तो वो तो ठाकुर जी का प्यारा हो जाता है तुरंत। आप देखिए यदि उनकी गुरु में ईश्वर बुद्धि ना होती और उनका विचार आता कि मुझे क्यों वापस भेज रहे हैं, तो उनको ये अनुभूति होती जो हुई, और जब गुरुदेव ने जीवित काल में उनको ये दे दिया तो बाकी कुछ बच जाएगा देना क्यों। जब भी गुरु आ गया हो तो कभी बुद्धि भौतिक बुद्धि ना लगा के अति हर्ष से अति उल्लास से हमेशा कहें जी गुरु जी गुरु। ये इसी बात से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, जब गुरुगत प्राण होते हैं जिस शिष्य के उसी बात से ईश्वर प्रसन्न जाते हैं, उस पर महती कृपा होती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि गुरुदेव, उनकी इच्छा भी थी रहने की गुरुदेव के, फिर भी वो चले गए वापस क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी। क्यों उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि हृदय में बैठ के ये बात किया यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, इन्हीं की कृपा से मुझे श्री हरि की कृपा प्राप्त। तो ये बात दृढ़ता से हृदय में बैठनी चाहिए। क्यों, क्या यदि अध्यात्म में खासकर गुरुदेव की वाणी में लगाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा में लगाएंगे तो विनष्टि, चाहे मंदिर में रहेंगे तो भी विनाश होगा। इसलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा कि रेजर्स एज भक्ति, क्यों, इसलिए वो सब प्रदान भी कर सकती है, सब खत्म भी कर सकती है, और ये इतना खतरनाक है। हमने सुना हुआ है कि मनुष्य बुद्धि नहीं, फिर भी सामान्य साधक मनुष्य बुद्धि लगाता है, तो इसलिए वो सामान्य साधक ही रहता है, सामान्य ऑर्डिनरी डिवोटी। जैसे कोई व्यक्ति खुद राधा नाम कर रहा है काफी देर, वो एक अलग बात है, और यदि गुरुदेव ने बोल दिया रोज 20 मिनट राधा नाम किया करो, ये निकाई नाम, ये गौर नाम किया करो, कि गुरुदेव के मुख से निकला एक बार और वो फॉलो कर रहे हैं तो उसे हरि देख रहे हैं, अरे ये तो मेरे प्रिय दास का मेरे उसकी वाणी फॉलो कर रहे हैं, तो अति प्रसन्न अति हर्षित होते। जो जन्मों जन्म से स्वयं की साधना से प्राप्त नहीं होता, जब गुरु आज्ञा कुछ होती है वही राधा नाम वो फल नहीं देगा, जब गुरु आज्ञा करेंगे ये करो तब वो फल अनंत रूप में प्राप्त होगा। हम चाहे जाके कहीं भी रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, नवदीप कहीं भी जा रहे हैं, वो बात अलग है, पर गुरुदेव ने कहा आप 3 दिन के लिए नवदीप हो गया तो उस जाने से जो फल प्राप्त हो। स्पेशली मैं एक भक्त नहीं जा रहे परिक्रमा में, हमने उन्हें बोला कि नहीं कुछ भी हो आप आओ 2 दिन के, तो फिर वो आए, उसके बाद नवदीप परिक्रमा में जाना भी बंद हो गया। तो गुरु आज्ञा से कोई चीज प्राप्त होती है, ये मंत्र करो, ये मंत्र ज्यादा करो, ये काम करो, नवदीप जाना भी है, नवदीप ना जाना भी है, वृंदावन जाना या वृंदावन ना जाना भी, यदि आज्ञा हो जाए किसी भी प्रकार की तो वो सहर्ष स्वीकार यदि कोई शिष्य नहीं करता तो वो मंत्र बुद्धि ला रहा है, मंत्र बुद्धि लाते ही भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसलिए ये बात हम आप सबको बता रहे हैं। हम जो भी कुछ, जो बद्ध जीव जो है जो भी कुछ कर रहा है, वह किस लिए कर रहा है? राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा प्राप्त करने के लिए गौड़िया वैष्णव समाज में, ठीक बात है? हाँ, तो समस्या क्या है? सब हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं युवा सरकार की, हाँ, तो समस्या ये कि अनादि काल से जीव जो है कृष्ण बहिर्मुख है और वो वांछा कर रहा है संसार के अंदर। भगवान के बहिर्मुख हैं और संसार में बहुत वांछा कर रहे हैं और संसार के विषयों में, संसार के भोगों में आसक्त हैं, ये समस्या है। तो भगवान को तो पता ही ये समस्या है और करना क्या है? श्रीहरि में, युवा सरकार में हमारा मन लगे, उनकी सेवा प्राप्त हो, ये हमारी आकांक्षा है। ये ठाकुर जी की भी आकांक्षा है कि हमें ये हमारे को युवा सरकार की सेवा प्राप्त हो। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, समाधान क्या करते हैं? ठाकुर जी जानते हैं कि ये बद्ध जीव जो है स्वयं से नहीं कर पाएगा, तो क्या करते हैं? स्वयं ही श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में खुद ही स्वयं प्रकट होते हैं। आप ये पढ़ेंगे कि रूपे पाईगो सेवा के तात्पर्य में श्री हरि की साक्षात करुणा, भगवान की जो करुणा है, जो कृपा है, वो एक मूर्ति रूप धारण करके संसार में विचरण करती है। क्या है वह मूर्ति? है श्री गुरु और श्री वैष्णव। श्री गुरु श्री वैष्णव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो श्री हरि की करुणा का स्वरूप है। जो हम श्री हरि की करुणा चाहते हैं वो ही हमारे सामने है। आप समझिए, हम श्री हरि की करुणा प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं, हाँ, तो करुणा तो हमें तो प्राप्त हो गई करना। कैसे? श्री गुरु प्राप्त हो गए, श्री वैष्णव प्राप्त हुए। तो जो चाहते हो वह को प्राप्त हो गया, आपको ये समझ नहीं आ रहा? जो आप प्राप्त करना चाहते थे वह को प्राप्त हो गया। अब करना क्या है? जब हमें श्री गुरु श्री वैष्णव प्राप्त होते हैं, इसे बाबा जी हमारे अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से संसार का जो मैल है वो हृदय से दूर होता है और इससे विशेष भजन संपादित होता है। वो विशेष भजन जो श्यामा श्याम को हमारी ओर आकर्षित करता है। हम सब भजन करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन जप अध्ययन, इसलिए ताकि श्यामा श्याम की करुणा को हम आकर्षित कर सके, वो हम शुद्ध भजन कर सके, ताकि हमारे को हमारा स्वस्वरूप का जागरण हो, इसलिए सारी साधना करी जा रही है, हाँ। परंतु ये केवल स्वयं के थोड़े प्रयास से ये संभव नहीं होता कि हमारे अंदर से हृदय की मैल धुल जाए और हम हमारे अंदर राधा कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा जाग उठे। ये स्वयं के प्रयास से नहीं होता, ये बाबा जी महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि जब हम श्री गुरु और श्री वैष्णवों की सेवा की अतिशयता करते हैं, उसी से वो वाला श्रवण और कीर्तन होता है, वो वाला जप होता है, जो जिसे आप लीला स्मरण कहते हैं, वो वाला जप होता है। शरीर की मैल जो है वो तो सर्फ से धोई जा सकती है, कपड़े की मैल, शरीर की मैल साबुन से, सर्फ से धोई जा सकती है, पर जो मन की काली मां है वह तो गुरु और वैष्णव कृपा से ही धुलती है, वह स्वयं के प्रयास से नहीं धुलती। ये आगे भी बाबा काफी जगह में बता रहे हैं। इसी भजन के अंदर आगे बताया गया है कि भगवान के हम उन्मुख हो, इसीलिए भगवान ने ये जो करुणा है, भगवान की करुणा उन्होंने अपने हाथ में ना रखकर भक्तों को सौंप दी है। भगवान ने जो करुणा जिसकी हम कामना करते हैं, भगवान स्वयं डायरेक्टली नहीं करते किसी पे, ये बता रहे हैं शिदानंद दास बाबा जी महाराज कि उन्होंने भक्तों को ये करुणा सौंप दी है, उनको ट्रेजरार बना दिया है करुणा का, और वह भक्तों को कृपा का वाहन बनाकर ही हृदय में संक्रमित होती है। देखिए, जो हम करुणा चाहते हैं ये प्रयास से नहीं होती, स्वयं के स्वयं का प्रयास भी करना है पर गुरु वैष्णवों की कृपा का आश्रय लेकर प्रयास करना है। इस प्रयास से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और वो कृपा हमारे को प्राप्त होती है जिसकी हम जन्मों जन्मों से इच्छा कर रहे हैं। ये जो कृपा है भगवान की कृपा, ये स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती, ये गुरु वैष्णवों का वाहन बना के ही ये कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब आप देखें, ये बताया गया है कि रूपये भाईवो सेवा के तात्पर्य में प्रार्थना में, और ये आगे चल के इवन प्रार्थना में भी बताया गया है और प्रेमपति चंद्रिका में भी बताया गया है। श्लोक नंबर 86 में प्रेम भक्ति चंद्रिका में या तात्पर्य में बताया जा रहा है, महत कृपा के माध्यम से ही ये जो करुणा है, भगवान की करुणा जो है, ये जीव के भीतर आविर्भूत होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती। तो जब स्वतंत्र रूप से प्रयास कर रहे हैं बिना गुरु वैष्णव की करुणा का आश्रय लिए, तो जो हम करुणा प्राप्त करने की इच्छा करें, इच्छा तो बनी रहेगी पर प्राप्ति नहीं होगी। इस यहां पे भी बाबा जी बता रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से करुणा प्राप्त नहीं होती। बाबा जो संसार में दर्द जीव है, इतने ताप है, इतने दुखों से क्लेशित जीव है, उनके लिए साधु कृपा ही प्रमुख है और भगवान की कृपा गौण है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है, प्रमुख जो है, वो तो साधु कृपा है। इसी तात्पर्य में आगे बताया जा रहा है कि जिस भाग्यवान जीव पर महापुरुष की करुणा उतर कर जितना प्रभाव विस्तार करती है, उतना ही वह भगवत प्रेम पाने का अधिकारी होता है। हम सब भगवत प्रेम चाहते हैं, हाँ, तो महापुरुषों की करुणा जिस हद तक, जिस मात्रा में हमें प्राप्त होती है, उसी मात्रा में भगवत प्रेम प्राप्त करने के साधक जो है वो अधिकारी बनते हैं। भगवत प्रेम प्राप्त कैसे होता है, ये साइंस बताई जा रही है। अनंत नमन है श्री अनंता स्वामी जी महाराज, क्योंकि उन्होंने एकदम स्पष्ट करके बता दिया है जो कि शास्त्रों में पहले से था। बाबा जी कोई नई बात नहीं बता रहे, वही बात बता रहे हैं जो शास्त्रों में अनंत काल से है, पर जी अपने आप से शास्त्र नहीं जान पाता कि क्या लिखा गया है। हमने भी ये पिछले सत्र में बताया था, पर दुर्भाग्यवश कोई भी भक्त इस बात को ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि हमने नहीं देखा कि किसी का भी इतना चर्चा, इतना चलने के बाद किसी एक भक्त ने भी प्रयास नहीं किया कि अतिशयता करें। अतिशयता मतलब जो कर रहे हैं उससे बढ़कर करना, या हम आगे विस्तार के लिए बताएंगे कि मतलब जो कर रहे हैं उसके उसमें बदलाव करके ऐसी इस प्रकार से सेवा श्री हरि, श्री गुरु, श्री वैष्णव की करी जाए जिससे मुझे अतिशयता से मैं सेवा करूं कि उनका हृदय द्रवित हो जाए और मेरे पे महती कृपा वो करे। देखिए श्री हरि की कृपा ही श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में, ये समझने की कोशिश करें, श्री हरि की कृपा श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में है, हमारे समक्ष है, पर उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा? देखिए गन्ना है, गन्ना आपके सामने है, आपकी इच्छा है गन्ने का रस पान करने की, तो क्या गन्ना सामने होते ही आपका पान हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कैसे होगा गन्ने के रस का पान? वे गन्ना जब किसी प्रकार से एक मशीन में जाके द्रवित होता है, द्रवित होकर से जो रस निकलता है उसका जब आप पान करते हैं तो आपकी जो प्यास है वह बुझती है। उसी प्रकार से जब साधु हृदय, गुरुजनों का हृदय विकलित होता है, अरे ये भक्त तो बहुत सेवा कर रहे, अरे ये माता जी तो बहुत सेवा कर रही, ये तो बहुत सेवा कर रही, तो जब उनका हृदय विकलित होता है तो वो जो रस उनके हृदय से निकल जाए, करुणा रस, वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यही बाबा जी का, ये संक्रमित होता है, ये संक्रमण होता है। संक्रमण कैसे होता है? जैसे कोविड है, کسی کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر دوسرے میں چلا جاتا ہے اور سامنے آ جائے. یہ سامنے آنے سے تو یہ شاریرک کھیل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دیویہ گیان ہردے پرکاشت. یہ دیویہ گیان ہردے سے ہردے میں پرکاشت سنکرمت ہوتا ہے. کووڈ ہوتا ہے شریر سے سنکرمن, یہ ہوتا ہے ہردے سے ہردے میں سنکرمن. پر کیسے؟ ان کا ہردے وکرت ہونا چاہیے. پھر ایکانت میں بیٹھے چنتن کر لیں آپ کا ایک بار بھی اور خود کے چہرے پہ مسکان آ جائے تو کرپا پراپت ہو جاتی ہے. بٹ مسکان کیا کسی بھی بھکت کے لیے آ جائے گی؟ نہیں. تو جنہوں نے ان کو واسطو میں پرسن کیا ہوا سیوا, ان کو تو کچھ نہیں چاہیے. بھگوان آتما رام ہے, بھکت آتم بالکل ترپت ہے, سوئم میں ترپت, انہیں تو کچھ نہیں چاہیے. اور پھر بھی جب سیوا کرنے کا پریتن دیکھتے ہیں سادھک کا, تو وہ دربی بھوت ہوتے ہیں. ان کا دربی بھوت ہونا ہی ہمارے سدھی کا دروازہ ہے. جس ماترا میں وہ دربی بھوت ہوں گے ہمارے لیے کہ ہاں اس کا کلیان, ان کے من میں صرف یہ جاگنا چاہیے اس ہردے سے اس کا کلیان. کئی بار اتنی سیوا کرتے تھے بھکتوں کی, روز چنتن ہوتا ہے کچھ بھکت گرو جنوں, ان کو روز کرپا پراپت ہو رہی ہے. تو وہ اس پرکار کی سیوا, اس پرکار کے گروگت پران بھی ہیں. گرو سیوا کے علاوہ ان کے جیون میں کچھ نہیں. تو ہمارے کو بھی اپنے جیون کا روپانترن اس پرکار سے کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی وہ کرپا پراپت ہو جو گروگت پران جو ہوتے ہیں جن کو کرپا پراپت ہوتی ہے, ہمیں بھی وہ کرپا پراپت ہو. اب جیسے کہ گاڑی جو ہے پیٹرول سے چلتی ہے, وہ اپنے آپ سے نہیں چلتی. تو یعنی یہاں سے دلی سے کسی نے جانا ہو, امریکہ جانا ہو, کہیں بھی جانا ہو, تو وہ ایک وشیش ماترا میں پیٹرول ڈلوائے گا, کوئی تو وہاں تک اڑان بھرے گا. پرنتو یعنی وہ کہیں گے ہاں جی آدھا لیٹر پیٹرول ڈال دو, تو کیا وہ دلی سے امریکہ جا سکتا ہے؟ سمبھو نہیں ہے. اسی پرکار سے جب ہم یہاں سے گولوک تک کی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو جو پیٹرول جو گیس ہے وہ ہمارے پرچیز پاور کے پرے ہے, ایک گرام بھی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کرپا ہے. تو جس ماترا میں ہماری کرپا ہوگی اسی ماترا میں ہماری اڑان بھرے گی, اسی ماترا میں ہم آگے جا پائیں, اس سے آگے نہیں جا پائیں. یہ سارا نربھر کرتا ہے ہم کتنی کرپا ارجت کر رہے ہیں. اتنی باری ہماری چھلانگ ماری جاتی ہے بھکتی میں, یا کہہ لیجیے اڑان ماری جاتی ہے. جب ہم اونچی اڑان بھرنا چاہتے تو ہمارے کو نرنتر اس میں گیس کرپا نرنتر بھرنی ہو. ہمارے ہر ایکشن سے شری گرو شری ویشنو سے پرسن ہوں. ہمارے ساتھ والے جو ویشنو ہیں جتنے کو آخری جنم دی ہے تو وہ پرسن ہوں ہماری کریا کلاپ سے, دروی بہت ہوں ہمارے اوپر, یہ اچھا ہے, یہ ونم رہے بس. تو جس ماترا میں ہماری سیوا دربھوت کرتی ہے گرو اور ویشنو کے ہردے کو, ان کی کرپا کا سنچار ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہمارا کلیان ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ پرارتھنا کے اندر ہری ہری کبھی مور ہوئی وے سوگی, پیج نمبر 22 میں تاتپر میں وردھن آ رہا ہے. جب مہت کرپا گرو کرپا جب پراپت ہوتی ہے تو جیو جو ہے بھکتی کا آشرے لیتا ہے, جیسے سب سادھک ہیں بھکتی کا آشرے دیا, کیونکہ اس کے بعد اپنے من مت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں. اس کے بعد بابا جی کہہ رہے ہیں شری گرو ویشنو کی کرپا سے اس میں سو سوروپ کا جاگرن ہوتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے ہردے میں ہمارے سوروپ کا جاگرن, ہم یہی چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے اور نرنتر چاہنا چاہیے. تو چاہنا الگ بات ہے, جیسے ہم چاہ سکتے ہیں اربوں روپے ہوں اور ہم کریں کچھ نہ تو اربوں روپے نہیں آئیں گے. اسی پرکار سے ہم یہ پریم دھن چاہتے ہیں, سو سوروپ کا جاگرن چاہتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں بابا جی, یہ شری گرو شری ویشنو کرپا سے پراپت, جو ہم چاہتے ہیں وہ ایسے پراپت ہوتا ہے. آپ دھن دھن نمن کریں بابا جی مہاراج کو کہ انہوں نے یہ سارے سوکشم رہسیہ جو ہیں یہ کھول کے بتا دیے. یہ نہ بتاتے تو کسی کو بھی کیسے پتا چلتے؟ آپ کو سوچیں کیسے پتا چلتے کسی کو؟ اور جاننے کے بعد بھی ہم اس میں بدلاؤ یدی اپنے جیون میں نہیں کریں تو ہم ایک پرکار سے اس کرپا کا انادر کر رہے ہیں جو ہمیں اتنی ولکشن کرپا پراپت ہوئی ہے. بابا جی مہاراج کا سانندھیہ کے بعد ان کے جو گرنتھ ہیں ہمیں پراپت ہوئے ہیں تو یہ, اور اب اس کے بعد ہمیں ان گرنتھوں کو سامانیہ ویکتی تو سمجھ نہیں پا رہے, پڑھتے ہیں لوگ پرنتو پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے, پر ہم سمجھ بھی پا رہے ہیں تو ہمیں بابا جی مہاراج کو انہوں نے منجری بھاو سادھنا ہی کیول نہیں بتائی اپنے گرنتھوں میں, انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ منجری بھاو اپاسنا میں سدھی کیسے پراپت ہوگی, کیسے ہوگی؟ شری ہری اور شری گرو کی کرپا کا آشرے لے کے جب سادھن کرتے ہیں اس سے وہ سدھی پراپت ہوتی ہے, نہ کہ کیول سوئم کے پریاس سے. مہت کرپا بنا کون کرم, مہت کرپا بنا کون کرم بھکتی نئے, کرشن بھکتی دورے سنسار نہ ہوئے شہ. مہت کرپا کے بنا کوئی کرم بھکتی نہیں ہے. کرشن کرپا, مہت کرپا یہ ایک ہی ہے, یہ الگ نہیں ہے, یہ الگ نہیں ہے. کہیں سوچے کہ گرو کی کرپا اور کرشن کا کچھ الگ ہوتی ہے, الگ نہیں ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم آج جو گرو پورنیما ہے آچاریوں کی وانی کو ہم جب ہم فالو کرتے ہیں تو ان کی کرپا پراپت ہوتی ہے. شری آنندداس بابا جی بھلے ہی وپو روپ میں ساتھ میں نہیں ہیں, پرنتو وپو اور وانی میں کوئی بھید نہیں ہے, وانی سدے تراجمان ہے. وپو تو جائے گا ہی, کتنے آچارے ہوئے ہیں جو چلے گئے ہیں, وپو تو جائے گا, پرنتو جو وانی ہے وہ ابھی بھی پرکٹ ہے. وانی کا سنگ مطلب ان کا ڈائریکٹ سنگ, ڈائریکٹ سنگ مطلب کہ ڈائریکٹ کرپا, اپرکٹ نہیں ہے, وہ وانی روپ میں پرکٹ ہے بابا جی مہاراج. تو آج ہم انہیں کو ایک اس طرح شردھانجلی دے رہے ہیں ان کی وانی کا سمرن کر کے, کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, ہمارا کلیان ہوگا کیسے. اور دیکھیں یہ پیج نمبر 10 میں پرارتھنا میں بتایا گیا ہے کہ جو سمندر ہوتا ہے وہ جل کا مول آشرے ہوتا ہے. جل کا آشرے کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا جل کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں, ٹھیک ہے. ہاں تو بادل جو ہیں وہ اسی سمندر سے جل لیتے ہیں اور جو وش مانو ہے ان کو بانٹتے ہیں. اسی پرکار سے بابا جی کہہ رہے ہیں رادھا مادھو کا کرونا سندھو, جیسے سندھو جل کا ہوتا ہے یہاں پہ, یہاں پہ رادھا مادھو کا کرونا سندھو تب سنتپت ہو کر سادھو روپی میگھ دوارا سنسار کے جیووں پہ سنچارت ہوتا ہے. کرونا سندھو کی کرونا, وہ جو میگھ بنتا ہے وہ سادھو ہوتے ہیں, ان کے دوارا ہی وہ جو کرپا ہے, کرپا کیا ہے؟ وہی کرونا رادھا مادھو کرونا سندھو ہی ہے, وہی کرپا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھاو بن کے بالن بنتے ہیں, وہ بالن بن کے پرانیوں کو پراپت ہوتے ہیں. تو سادھکوں کو پراپت کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بادل دوارا. پر کیا بادل کے سوئم کا جل ہے؟ نہیں, وہ سندھو کا جل ہے. اسی پرکار سے یسیا پرساد بھگوت پرساد ہے, بھگوان کی ہی کی کرپا, پرنتو سادھو گرو کو واہن بنا کر پہ ہم پہ برستی ہے سوتنتر روپ سے نہیں. اگر سوچے جل ہمارے کو مل جائے دلی میں سمندر کا تو سمبھو نہیں ہے, پر ہاں میگھ ہمیں دیکھا تو سمبھو. اسی پرکار سے وہ جو میگھ ہیں, وہ گرو روپی میگھ, شری گرو شری ویشنو روپی میگھ, وہی وہ کرپا دیتے ہیں ہمیں, جو کرپا کی ہم دن رات یاچنا کر رہے ہیں جب اتیادی کے دوارا. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے منہ مکھ سے, یہ آپ شلوک میں دیکھ سکتے ہیں 75 نمبر شلوک ہے پریم بھکتی چندرکا کا. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مکھ سے تو ہم شدھ بھجن کی یا نشکام بھجن کی باتیں کافی کرتے ہیں, شدھ بھجن ایسا ہوتا ہے, نشکام بھجن ایسا ہوتا ہے, یہ بات تو کافی کرتے ہیں, پرنتو واسطہ میں سوسوک واسنا رہت بھجن یہ بہت ہی درلبھ ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے سدر کیا تھا سوسوک واسنا جو تک یوٹیوب پہ بھی ہے, اس کا ادھکانش لوگ نہیں سمجھ پائے. سو سکھ واسنا رہت, سو سکھ, سو کی स्वतः अस्तित्व ही नहीं रहता। मंजरी भाव के अंदर जब सिद्धि होती है या आस्वादन होता है इस जगत में भी, तो स्वतः अस्तित्व ही नहीं रहता। मैं तो राधा माधव की कठपुतली है, उनके आवेश की प्रेमावेश की मूर्ति है, उसका स्वयं के कोई इच्छा कैसे हो सकती है। स्वस्वित वास्तव से बिल्कुल रहित होना, ये जो भजन है ये मुंह से तो बोला जाता है बाबा जी कह रहे हैं, परंतु ये याचन जो है ये बहुत दुर्लभ है। बात करना अलग है निष्काम भजन की, और करना निष्काम भजन वो अलग है। बाबा जी कह रहे श्री गुरु और श्री हरि की कृपा से ही ये संभव है। श्री गुरु और श्री हरि की कृपा से ही केवल ये संभव है। ये स्वयं से निष्काम भजन शोषण कर लेंगे ये संभव नहीं। तो जिस मात्रा में हम श्री गुरु और श्री हरि को प्रसन्न कर पाएंगे अपनी सेवा के द्वारा, उसी मात्रा में जो कृपा संचारित होगी, उस कृपा से जो हम भजन करेंगे वो होगा वास्तव में वो निष्काम भजन, जिससे जिससे हमारा कल्याण होगा। अब ये जो बातें हमने आपको बताई हैं और भी सुन सकते हैं, जैसे कि हम ये बातें इसलिए खोल के बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब हमने बताया उसका हमें लगा नहीं कि बहुत भीतरी प्रवेश हो पाया, क्योंकि हो पाया होता तो जीवन में या वार्ता में तो होता। हमने बताया कि मनोमय सेवा, अब भक्तों को यही समझ नहीं आया कि मनोमय सेवा क्या होती है। मनोमय सेवा वो होती है जो गुरुजनों हृदय वैष्णवजनों के हृदय को स्पर्श करे, मर्म स्पर्श हृदय स्पर्श, जो उनको संतुष्टि दे, जो उनका सुख विदान करे, जो उनका संतोष विदान करे, जिससे वो प्रसन्न हो, ये मनोमय सेवा होती है। आपने बच्चे की मनोमय सेवा क्या है, उसको ट्रॉफी खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, बर्गर खिलाना, उससे वो प्रसन्न होता है। अब किसी पड़ोसी से थोड़ा पूछोगे मेरे बेटे की मनोमय सेवा क्या होती है, पूछोगे नहीं, कैसे करोगे उसका मन जान के। इससे थोड़ा पूछोगे, अरे तुम भक्तों ने आपको बात करी, तुम मुझे बता देना मनोमय सेवा क्या होगी, मैं भी वही कर लूंगा। अरे ऐसे नहीं होता, आपने मना नहीं किया, आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। आप मनोमय सेवा अपने मन की नहीं, उनके मन अनुरूप, जिससे वो खुश हो, आपकी स्वस्थ वासना से बिल्कुल रही, तो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, विशुद्ध उनकी प्रीति के लिए। आप ये समझो, जब हमने पूरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति की भी मनोमय सेवा नहीं करी, कभी किसी एक व्यक्ति की भी नहीं करी, तो जीवन के अंत में हमें ऐसी सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी जिससे हमें राधा कृष्ण की मनोमय सेवा निरंतर प्राप्त हो जाएगी। हमने कभी कोई कर्म करा ही नहीं हो कभी जीवन में, वो हमें सदा सदा के लिए क्यों प्राप्त होगा। हमने करा ही नहीं हो कभी कार्य, मनोमय सेवा इसलिए कर, पता तो होगी मनोमय सेवा होती क्या है, मनोमय सेवा में स्वयं को छोपना होता क्या, एक दो दिन की बात नहीं। आप राधा कृष्ण की मंजरी बनना चाहते कितने दिन, दो दिन के लिए नहीं, सनातन काल के लिए, मतलब क्या है उनके मन के अनुरूप सेवा करना। जब आपने कभी अपने मन को छोड़ किसी के मन के अनुरूप सेवा कभी करी ही नहीं, लंबे समय तक करी ही नहीं, प्रयास कभी करा ही नहीं, अपने प्राण उसमें झोंके ही नहीं, तो उस जिस चीज में हमने प्राण ही नहीं झोंके, उस चीज में सिद्धि कैसे मिल सकती है। ये करना परम आवश्यक है मनोमय सेवा, क्योंकि ये ही तो हम किसी की करेंगे, वो राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, किसी के ईश देव, किसी के नरसिंह वाला, कोई भी हो, पर मनोमय ये तो सभी संप्रदायों के लिए ये तत्व तो समझना बहुत जरूरी है कि मनोमय सेवा जिस मात्रा में हम गुरु वैष्णव करते हैं उसी मात्रा में वो द्रवित होते हैं, उसी मात्रा में कृपा का संचार हमारे लिए होता है, उसी मात्रा में वो विश्व भजन संपन्न होता है। ये तो एक बात, दूसरी बात है कि अब हमने मनोमय सेवा करी ही नहीं कभी किसी की, हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण, हमारे हृदय का निर्माण ही नहीं हुआ कि किसी की सेवा के लिए हमारा हृदय का निर्माण ही नहीं हुआ, तो उस वैसा सनातन हृदय हमें कैसे प्राप्त हो जाए। यहीं से तो बनता है, वो ईंट ही रखे तो महल बनता है, तो धीरे धीरे मनोमय सेवा करते करते वो महल बनेगा जिससे राधा कृष्ण के मनोमय सेवा दिन रात करेंगे, निरंतर करेंगे, सनातन काल के लिए करेंगे, स्वसुख वासना रहित होके। मनोमय सेवा करना परम आवश्यक है, ये कोई बात ये इग्नोर करके इसको छोड़ के यदि हम सोच रहे हैं कुछ और तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो समझ लो कि भटकाव है। बहुत प्रकार से भक्ति नहीं होती, मैनी वेज ऑफ भक्ति नहीं है, एक ही प्रकार से भक्ति होती है। यदि हम शास्त्र को मानने वाले हैं तो भक्ति एक प्रकार होती है, यदि नहीं मानने वाले तो बात अलग है। आप बाबा जी के शब्दावली पे ध्यान दें, वह कह रहे हैं कि रूपये भाई को सेवा में शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक जो हैं वे श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से शुद्ध भजन संपन्न करते हैं। कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वह साधक श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से ही शुद्ध भजन कर पाते हैं। तो मतलब जो शास्त्रों में श्रद्धा होती है तो इसी प्रकार से होती है। मार्ग यही है, बहुत मार्ग नहीं है, पर दुर्भाग्य की बात है, पहली बात तो ये ग्रंथ किसी के बहुत कम लोगों के पास है, अष्टानंदा बाबा जी महाराज के, उसको पढ़ने के बाद भी हमने कम से कम 15 साल से तो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमने कभी एक व्यक्ति के मुख से ये एक लाइन भी नहीं सुनी इस बारे में कि कोई बोले यहाँ सेवा की अतिशयता, उस मात्रा में कृपा का संचार, जबकि बाबा ने ग्रंथों में अनेक जगह पे बोला है, अनेकों जगह पे बोला हुआ। मतलब बाहर के लोगों छोड़ो, हमारे जो बाबा के आश्रित जन है उसमें भी हमने एक व्यक्ति के मुझसे कभी जीवन में एक बार भी नहीं सुना, तो सुना ही नहीं है तो जीवन में आना की तो बात ही छोड़ दें, या जीवन में है ही नहीं तो अगर सामान्य साधक जो है वह धाम में जाएगा या कलकत्ता दिल्ली कहीं भी जाएगा संग करेगा तो क्या होगा, वह कुछ और ही आचरण देखेगा, वो सोचेगा इसी प्रकार से भक्ति होती है गुरु वैष्णव का कृपा का आश्रय लेके, और दूसरी प्रकार से भी भक्ति होती है हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा नहीं है। वह हमारे आचरण से हम असत्संग दे रहे हैं वास्तव में, क्योंकि गुरु ने जो दिया है वो तो वो छोड़ के चले गए शास्त्र, पर उसको पकड़ा किसने, यदि पकड़ा है तो कुछ तो पकड़ा, तो यदि सही नहीं पकड़ा तो गलत को पकड़ा, इसलिए बहुत खतरनाक है कोई भी संग करना, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, जीव उल्टे भटकाव में ही रहता रहे, क्योंकि जो देखेंगे सभी स्वतंत्र आचरण कर रहे हैं, सभी अपने मन के से जहां मन के जहां चले गए जो कर लिया, जहां बैठ गए वहां चले गए, वहां खा लिया उससे बात कर ली, ऐसे भक्ति नहीं होती। हम अनेक सिद्ध संतों से भी मिले, अनेक अन्य संप्रदायों से भी, वह यही कहते हैं जब कोई आता है उनके पास हम किसके आश्रम में, जब कोई जवाब तो डांट पड़ जाती है जाओ आश्रम में लगे भक्ति। हम एक संत मिले थे, वह आचार्य हैं, उन्होंने भी यही बात हमें बताई कि हम पूछते हैं पहला प्रश्न ये कि किसके आश्रय में हो, दीक्षा नहीं पूछते हम किससे हुई है तुम्हारे आश्रय में किसके हो, जब आश्रय में ही हो तो भजन तो हो ही नहीं रहा, मन मन कभी यहां चले गए कभी वहां चले गए, ये कर लिया वो कर, ऐसे शुद्ध भजन नहीं होता, ऐसे इसे अतिशय सेवा नहीं कहा जाता। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को ब्रज में जाने के लिए कहा, उनको था कि ये ना जाए, ऐसे किसी का भी संग करने का ठीक नहीं, तो उनको कम से कम सनातन गोस्वामी तो थे वहां पे, उन्होंने कहा उनका संग कर, हम तो किसी एक व्यक्ति का भी नहीं बोल सकते, हमने ये वाणी ही नहीं सुनी किसी भी भक्त के मुख से, तो जो वाणी का ही अनुसरण नहीं कर रहा तो गलत मार्ग तो सब नेचुरली है, आपको निर्णय कर सकते हैं यदि ये जो वाणी यदि सत्य है तो यदि इसका पालन नहीं हो रहा तो क्या वो संघ हमारे लिए अमृत का कार्य करेगा कि पॉइजन का कार्य करेगा, ये स्वयं का निर्णय। बाबा जी तो देखे चले गए, परंतु अब हमें समझ आता है कि बाबा जी ने हमें क्यों बोला कि मेरे जन जिस वर्ष हमारी बाबा जी से दीक्षा हुई उसी समय बोला था उसी वर्ष ही कि मेरे जाने के बाद मेरे ग्रंथों को पूरे विश्व में कौन वितरण करेगा, मुझे ये चिंता है, तुम्हारा नाम देगा और तुम कर। फिर बोला ये संप्रदाय की तुमने रक्षा करनी है, हमें समझ नहीं क्यों बोला, इतने संत इतने भक्तजन बाबा के विराजित हैं ब्रज में ही क्यों नहीं बोला, ये जो शास्त्र है जो लिखे है उसको जीवन में आचरण में लगाए बिना तो कैसे होगा। इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा बाबा जी के ग्रंथ की मूल है और हम तो केवल एक डाकिया डाक लाया वाली बात है। ये जो वाणी है वही आपको दे रहे हैं, हमारे से स्वयं का कुछ नहीं। हम नहीं बोले कि ऐसे करो, जो कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, जो स्वयं से नहीं समझ पाए केवल इसलिए हम वर्णन कर रहे हैं। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये जो है ये रिपु हैं, ये जो है बहुत भीषण दुश्मन है सभी साधक के, और ये जन्मों जन्मों से हैं, जन्मों जन्मों से छह प्रबल ये रिपु हैं, काम क्रोध लोभ पारिवारिक मोह इत्यादि। आप ये पढ़ेंगे पेज नंबर 28 पे प्रार्थना कि साधक अपनी शक्ति से इन छह दुश्मनों से लड़ाई कर ले तो उनको पराजित करने में समर्थ नहीं हो पाए स्वयं से। फिर क्या बोल रहे हैं बाबा जी, साधु गुरु वैष्णव की कृपा और भक्ति का आश्रय को छोड़ इनके कमर से इनके पंजे से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। किनके पंजे से? काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इनके पंजे से छुटकारा जो है कैसे प्राप्त होगा? श्री गुरु और श्री वैष्णव की कृपा से और भक्ति के आश्रय से। हम जैसे बाबा जी को स्पष्ट बता रहे हम भी वही कह रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा कि सिर्फ गुरु वैष्णव सेवा करो और भक्ति मत करो माला मत करो अध्ययन मत करो। हम कितना बार बताते हैं कि जो वास्तव में श्री गुरु श्री वैष्णव के मनोमय सेवा करना चाहता है उसका कुछ स्तर जब तक नहीं होगा वो कर ही नहीं सकता। क्या स्तर के लिए मिनिमम क्या है? कम से कम 2 घंटा ध्यान पूर्वक जब वो भी सुबह, और कम से कम बहुत कम से कम बहुत ही बहुत कम से कम बहुत 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 ही बहुत कम से कम 1 घंटा वास्तविक गौड़िया ग्रंथों का अध्ययन करना, बहुत कम से कम करना, सुबह जप करना और प्रसाद के अतिरिक्त कभी जीवा पे कुछ स्पर्श ना करना। ये तो फॉलो जब तक कोई नहीं करेगा वो सेवा की अतिशयता को छोड़ो सेवा ही नहीं कर पाएगा, उसकी मरते बुद्धि आ जाएगी श्री गुरु और श्री वैष्णव। तो बाबा जी भी यही कह रहे हैं गुरु वैष्णव की अतिशय सेवा प्लस भजन का आश्रय, इसी से ही काम क्रोध लोभ मोह से जीव पार हो सकता है। स्वयं से प्रयास नहीं हो सकता, खुद सोचिए इतने समय से प्रयास कर रहे हैं काम से पार होने का, क्रोध से पार होने का, लोभ से हटने का, मोह से हटने का, क्या सफल हो पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि केवल कोरा स्वयं का प्रयास था, एक तरह एक सामान्य व्यक्ति और ऊपर से उपमाधि घटोत्कच हो इतना बड़ा राक्षस हो गई तो उससे कहां से जीत सकते? तो काम क्रोध एक ही अपने आप में बहुत है, तो इन सबसे यदि वास्तव में छुटकारा चाहते हैं वास्तव में सदा सदा के लिए तो लाइफस्टाइल को बदलना होगा, जीवन में बिठाना होगा, स्वयं से नहीं हो सकता। बाबा जी ये कह रहे हैं नहीं होगा स्वयं से, स्पष्ट कह रहे हैं। आप खोलिए पेज नंबर 28, स्पष्ट कह रहे हैं, देखिए पुनः बोलते हैं इनके कवच से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है गुरु वैष्णव कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़। ये कम से कम बेसिक साधना हो, सुबह उठना जप करना अध्ययन करना केवल प्रसाद पाना। हम स्वयं रोज कितने वर्षों से रोज प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना पढ़ते हैं, रोज विराग कुष्मांजलि पढ़ते हैं, रोज आदरा सुधानी पढ़ते हैं, रोज समावली पढ़ते हैं, रोज भगवद गीता पढ़ते हैं, रोज अश्वमेध गीता पढ़ते हैं, रोज महाप्रभु के संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं और भी ग्रंथ जो आप कुछ कभी नहीं बोल पाएंगे वो भी पढ़ते हैं और रोज है। तो ये रोज पढ़ना ग्रंथ ये रोज ही एक प्रकार से व्यास पूजा बना रहे हैं, क्योंकि व्यास पूजा एक भक्त का प्रश्न है कि व्यास पूजा क्या होती है? व्यास पूजा एक कृतज्ञता है अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुवर के प्रति। मैं कृतज्ञ हूँ आपके ज्ञान दिए हुए ज्ञान द्वारा, आपके दिए हुए भक्ति, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उसका आई एम सेलिब्रेटिंग दैट, मैं धन्यवाद देता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। तो जब सुबह उठ के जप कर रहे हैं मंजरी भाव उपासना कर रहे हैं सिद्धि के लिए, तो बाबा जी को नमन कर रहे हो, व्यास पूजा ही बना रहे हो, अब हमें ही हमें ही नमन कर रहे हो, हमारी तो आगे क्या सुबह जप करो। भक्त के लिए व्यास पूजा एक दिन नहीं होती, रोज ये नहीं पूरा दिन भर मन पूरे साल भर मन मन से जहां मर्जी गए जो मर्जी किया जो मर्जी खाया पिया और एक दिन व्यास पूजा बना ली, ये कोई व्यास पूजा नहीं होती। जो साल भर व्यास पूजा नहीं बना रहा वो एक दिन में क्या व्यास पूजा बनाया, और जो साल भर बना रहा है तो व्यास पूजा जिस दिन बनेगा वो एक विशेष फल देगा। ये जो सुबह उठ के हम जप कर रहे हैं तो हम व्यास पूजा ही बना रहे हैं, बाबा जी के ग्रंथों का धन्यवाद करते हुए रोज अध्ययन कर रहे हैं तो ये व्यास पूजा ही बना रहे हैं। जैसे पेज नंबर 28 में ये बात बताई गई और आप आगे देखें तो ये जब काम क्रोध के बारे में बाबा जी बता रहे हैं पेज 73 में भी इसी प्रार्थना में कि काम क्रोध ज्ञान जब मन में वास करते हैं तो इससे मन दुर्बल हो जाता है, मन जो है साधक है वो दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कि सही पथ पे जाने की उसमें शक्ति नहीं रहती कि सही पथ पे जा पाए। जब काम क्रोध का अटैक होता है तो सही पथ पे नहीं जा पाता तो गलत पथ पे चल पड़ता है, तो उसका सामर्थ्य नहीं रहता स्वयं से वो भक्ति कर सके जब काम क्रोध का अटैक होता है। तो समाधान क्या है, वैष्णवों के संग और कृपा के फलस्वरूप जो वास्तव में भक्ति पथ होता है उसका आश्रय मिलता है। फिर वही बात बोल रहे इन छह और एकों से छूटने का यही उपाय है कि श्री गुरु श्री विष्णु कृपा के आश्रय में रहें, इनकी कृपा से ही होगा मेरा जो होगा, मेरा किधर उधर घूमने से जाने से बैठने से इससे कुछ नहीं होगा, हमारा तो बीसियों साल बाद वो बता दें ऐसे इससे कुछ नहीं होता, यहां चले गए चाहे धाम ही जाना क्यों ना हो हमारा कल्याण हमारे गुरुदेव की कृपा से होगा। क्या हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं कोई भी कार्य हम कहीं जा रहे हैं किससे मिल रहे हैं कुछ, या वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, यदि नहीं तो कार्य का क्या लाभ, ये बुद्धिमान साधक सोचते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि काम क्रोध आदि से छुटकारा जो है वह गुरु वैष्णव कृपा से मिलते हैं, पर किंतु वैष्णव चरणों के आश्रय की आशा मन में जगती भी कभी नहीं। ये देखिए बाबा जी क्या कह रहे हैं, जहां से हमारा काम होगा वहां के आश्रय लेने की आशा भी हमारे मन में नहीं होगी। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा काम जो है हमारे स्वयं के करने से नहीं होगा, ये होगा तो कृपा से, और कृपा होगी जब हम वास्तव में प्रसन्न कर पाएंगे। यदि आप ये प्रेम भक्ति चंद्रिका इसके प्रथम श्लोक में ही देख लें पेज नंबर 3 पे व्याख्या कर रहे हैं कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति आए, उनके गुरुदेव ने बोला कि प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ो, उन्होंने कोशिश करी उसके गुरुदेव बार बार बोले तुम्हें समझ आ रही है, तो उनका आश्चर्य होता है क्या गुरुदेव क्या पूछ रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे क्या समझ नहीं आएंगे श्लोक छोटे से। तो ये गुरुदेव ने कहा बोला व्याख्या करके बताओ, तो बोला ये मतलब नहीं है इसका मतलब ऐसे है, तो वह स्तब्ध हो गया वास्तविक मतलब जान के। तो बाबा जी कह रहे हैं प्रथम तात्पर्य में ही कि हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत होकर उन सबकी कृपा को संबल बनाकर आश्रय लेके इस व्रत को समझने की चेष्टा करें। तो प्रेम भक्ति भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ना तो बड़े दूर की बात है, बाबा जी कह रहे हैं व्रत को समझने की चेष्टा करने के लिए भी श्री गुरु और श्री वैष्णव कृपा का आश्रय लेने होगा, ये केवल किताब नहीं है कि पढ़ी और समझ ली। बाबा जी प्रथम तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं देखिए, उनकी कृपा का आश्रय लेके जब हम भजन ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये ग्रंथ समझ आएगा, उसके बाद फॉलो तो बाद में होगा। तो जो केवल स्वयं से कभी कोई ग्रंथ कभी कुछ ऐसे पढ़ लिया कर लिया इस प्रकार से नहीं होता, प्रथम है गुरु वैष्णव का आश्रय, कृपा का आश्रय, शास्त्रीय आश्रय नहीं, हम तो आश्रय में और करते मन की है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वास्तविक कृपा का आश्रय, कृपा का आश्रय कैसे हो गया उनकी अतिशय सेवा करें। ये महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के संदर्भ में ये वर्णन आता है, कुबुद्धि छड़िया करे श्रवण कीर्तन अचिरे पावे कृष्णेर चरण। कुबुद्धि छोड़िया, एक कुबुद्धि को छोड़ो, कुबुद्धि एक होती है सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि खराब बुद्धि, एक कुबुद्धि को छोड़ो, करो सही रूप से श्रवण कीर्तन, उसके बाद आश्रय लेकर जो श्रवण कीर्तन किया जाता है अचिरात पावे कृष्णेर चरण, बहुत शीघ्र श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कुबुद्धि क्या है? कुबुद्धि यही है कि हम स्वयं के प्रयास से, केवल स्वयं के प्रयास से मंजरी भाव में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं भक्तों कोशिश करते हैं, पढ़ लिया कुछ कर लिया और सोचते हैं ऐसे सिद्धि प्राप्त होगी। अपने आप से पूछिए, दिन भर लोभ के कार्य में लगे हुए हैं, हफ्तों महीनों में सालों लोभ के कार्य में, धन के प्रति लोभ में लगे हुए हैं, काम पूर्ति जब इच्छा हुआ कर लिया। हाँ जी, हम तो विवाहित है, हमारे पास लाइसेंस है, काम पूर्ति जब मर्जी, लोभ के कार्य में जब मर्जी, मोह में पूर्णता जननी जनक बंधु सूत्र द्वारा किस मात्रा में हम जाजन कर पा रहे हैं, हम स्वयं से पूछें। तो काम में, क्रोध में, मोह में इस प्रकार से पढ़े और हम सोचे कि हम मंजरी भाव पढ़ के इसमें सिद्धि हो जाएगा, तो आप खुद से पूछिए क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव है? उत्तर आएगा नहीं। तो समाधान तो है, ये तो करना ही करना है जो हम कर रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं करना, ये करना है, पर गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय लेके, आश्रय लेके जो हम करेंगे तो हम इनको पार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, भजन भी साथ में चलता रहेगा और भोग भी साथ में चलते रहेंगे, दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी, भोग भी चल रहे हैं और भजन भी चल रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ चलना संभव नहीं है। आप कहेंगे गुरु वैष्णव कृपा से क्या होता है, हम आपको बताते हैं क्या होता है। वो चीजें हमारे अंदर में बैठती हैं जो केवल एक पासिंग थॉट है। जैसा आपको उदाहरण दें, एक पेड़ है, उस पर टहनी है, टहनी पे पक्षी आया और चला गया, कुछ क्षण ठहरा और चला गया, पर उसने घर नहीं बनाया। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक प्रवचन में बात बताई जाती है वो हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आई, ऐसा नहीं कि हम सीरियस नहीं है, सिंसियर है हम, तभी तो हम ये सब सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जो विचार आया, कहनी पे आया, पर उसने घर नहीं बनाया, उस पक्षी ने घर नहीं बनाया, वो परमानेंट वहां नहीं रहा, आया और चला गया, जिसे कहते हैं सरफेस थॉट्स। तो वो जब विचार जो है हमारे हृदय में घर कर जाए, यही तो हम चाहते हैं कि मैं केवल राजा रानी की मंजिल और कुछ नहीं हूं, ये हमें समझ आ जाए, यही तो बाबा जी बता रहे हैं ग्रंथों में, ये समझ आ जाए, तो यही तो हम चाहते हैं। हम पढ़ते भी हैं, हाँ सरफेस थॉट भी आते हैं, हाँ, तो टिकते नहीं है, तो टिकेंगे घर बनाएंगे गुरु वैष्णव कृपा से। अब हमने अब सोचे कि हमने ग्रंथ खरीदना अलग बात होती है, पर ग्रंथ में रुचि होना अलग बात होती है। टू परचेज अ ग्रंथ इज समथिंग एल्स, बट टू हैव रुचि फॉर द ग्रंथ इज समथिंग एल्स। भगवान का नाम प्राप्त होना ये अलग बात होती है, नाम में कुमारी प्राप्त होना, नाम में नशा प्राप्त होना, ये दोनों चरणों में भक्ति से प्राप्त होना। हम शरीर को पढ़ा सकते हैं, शरीर को धाम में भी लेके जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं धाम में, पर हमारा हृदय धाम में कैसे जाएगा? वो कृपा से जाएगा, वो कृपा से जाएगा। शरीर को हम लेके जाते हैं, हृदय को लेके जाना बात हृदय की है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कर। हमको क्यों आश्रय ग्रहण करना है? क्योंकि हमारे को ये जो भक्ति की जो बातें हैं, ये हमारे अभी सरफेस थॉट्स हैं, ये हमारे हृदय में घर नहीं कर रहे, हमारी बात समझ पा रहे हैं। हम चाहते हैं जो विचार हैं, जैसे कि सब शास्त्रों में बताया गया रसो वही सह आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म की व्या जानवा, कृष्ण ही आनंद है। तो जो आनंद हम चाहते हैं वो भगवान है, ये विचार क्या हमें ये बात नहीं पता? पता है, पर क्या हमारे हृदय में घर कर रही है बात? नहीं कर, क्यों? क्योंकि उस मात्रा में कृपा का संचार नहीं। हम गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय नारायण से भीख मांगे, हे एक बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई कृपा करो, हे ठाकुर कृपा करो, वैष्णव गोसाई कृपा करो मुझ पर, भीख मांगे मैं समझ पाऊं कि कृष्ण ही आनंद है। क्या हमने नहीं सुना कि मैं SOLE हूं, सोल हूं, मैं फैमिली पैक सोल हूं? क्या हमने नहीं सुना कि हमने चर्निंग नहीं करी कितनी बार? क्या हमारे हृदय में बैठी नहीं बैठी? तो क्या हम रोए इस बात के लिए कि मेरे हृदय में नहीं बैठी? रोते तो क्या करते? आप सच्ची बताओ, अगर आप हृदय से रोते कि कृष्ण ही आनंद है, मेरे हृदय में बैठ जाए बात, और मैं SOL ही हूं, मैं कोई फैमिली पैक सोल नहीं, मैं एक कण हूं, आई एम नॉट अ पर्सन, मैं एक कण हूं, महाप्रभु ने बोला है ना आप कण हो, हमारी वाणी नहीं है, बाबा की वाणी नहीं है, महाप्रभु की वाणी है कि जीव क्या है, स्फुलिंग के कण, हम कोई व्यक्ति नहीं, हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कण है। क्या हमारे हृदय में बैठ गई है बात जिंदा स्त्री पुरुष इतना कार्य कर रहे? अगर हम वास्तव में हृदय में बैठी होगी बात, क्या बात रोते ना कि मेरे हृदय में बैठ जाए ये बात की, आप ही आनंद हो, मेरा आपसे ही संबंध है, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपका हूं, मैं आपकी दासी हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, ये बात मेरे हृदय में बैठ जाए। हे ठाकुर, हे गुरुदेव कृपा करो, रोएंगे उनकी कृपा का आश्रय लेंगे, भीख मांगेंगे, कृपा करो हे ठाकुर, हे गुरुदेव कृपा करो, मैं समझू। क्या हमने नहीं सुनी है बातें? सुनिए, पर घर में घर करिए बातें, वर्ष नहीं करी, इसलिए तो कृपा चाहिए कि घर कर जाए, सुनने से क्या होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि सुने नाम शे सब कथा गुची से मने व्यथा। नरोत्तम दास ठाकुर की भावना में केवल कोड़ा सुनना सुनना नहीं है, सुनने के बजाय जो बदलाव ही नहीं है तो क्या सुनना हुआ? क्या हमने नहीं सुना कि भगवान आनंद है, कि मैं कोई फैमिली का एक सुन, हमने नहीं सुना कि बदलाव आया? नहीं, तो मैं क्या सुना? वही लोगों अभी मतलब ये सब कथा खुशी से मनेर के तक मन की व्यथा गई। रोएगा व्यक्ति, कराएगा कि मुझ पर कृपा करो, सेवा की अतिशय तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप बताएंगे, प्रैक्टिकल कैसे सेवा वगैरह कैसे होती है, प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल कुछ हो तो भैया प्रैक्टिकल आपको उदाहरण बताएंगे कुछ कि कैसे एग्जांपल होते हैं। हम जानते हैं एक हमारे यहाँ पास में एक महिला रहती, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, वो एक ठाकुर जी के मंदिर में थी, 80 साल की महिला होंगी कम से कम। मैं रोज दशकों से डेकेड से रोज सुबह यहीं से राजेंद्र नगर में कहीं रहते थे, रोज सुबह 6 बजे करीब सुबह मंदिर जाते थे और रात को 8 बजे मंदिर से वापस आते, पूरा दिन ठाकुर जी के लिए होगी मंदिर में, पूरा दिन सुबह से रात, इसे कहते हैं सेवा की अतिशयता। रोज यानी कि गाड़ी से जाना, बस से, गरीब मतलब कि सामान्य मिडिल क्लास कहां से गाड़ी पहुंच करेंगे, पूरी लेडी कोई मदद करने वाला नहीं, रोज सुबह 6 बजे जा रहे हैं, शाम को 6-8 बजे वापस आ रहे हैं, पूरा दिन सेवा में, 80 साल की उम्र है, इसको कहते हैं सेवा की अतिशयता। आपने खंडेलवाल बुक शॉप का नाम सुना होगा, वृंदावन में, वह काफी नामी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, पर रोज अपने गुरु स्थान में जाते, रोज सालों से रोज झाड़ू लगाते। जो हमारा भी सेंटर हो कभी या मंदिर हो, हम भी कुकिंग कर सकते हैं सुबह से रात तक, जीवन समर्पित कर दिया, रोज झाड़ू लगाना, दुकान बाद में खोलते हैं, झाड़ू पहले लगाते, काफी देर रोज वह अनेक झाड़ू लगाने वालों को अपने नीचे रखते हैं, परंतु स्वयं गुरु चरणों में का आश्रय लेके सारे काम, पहले गुरु सेवा बाद में दुकान घर कुछ नहीं। एक भक्त हैं, उन्होंने मंदिर में रहकर रोज मंगला आरती का नियम बनाया हुआ है, तो 30-40 साल हो गए होंगे शायद, 50 साल हो गए होंगे शायद, वो उस मंदिर के अंदर रोज मंगल आरती जाते हैं, रोज उन्हें वो वृंदावन नहीं जा सकते, वृंदावन में जाना हो तो सुबह जाके रात तक वापस आ जाता कि मंगला आरती में मिस नहीं। यदि मंदिर को कभी ईश्वर की इच्छा से ये नियम भी कुछ कोई अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। कई लोगों को होता है रोज कुकिंग करके लाना या घर से लाना या मंदिर में आके कुकिंग करना, ये भी नियम लेते हैं कुछ वक्त। और क्योंकि जो मंदिर है वो साक्षात ठाकुर जी का राधा कृष्ण युव सरकार का कौन सी सेवा है, तो आप जो भी सेवा करो झाड़ू लगाना वो छोटी सेवा नहीं है। ललिता विशाखा सब सखियां रूप प्रतिमंडी ये सब यही सेवा करती हैं, कुछ और क्या करती है। कोई भक्त लोग बीमार हो जाते हैं उनकी सेवा में अपने आप को समर्पण करना आजीवन, ये भी एक सेवा होती है। हम एक भक्त को जानते हैं बहुत अमीर व्यक्ति है और बहुत बिजी है, परंतु जब भक्त मंदिर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो डायरेक्ट खुद सेवा करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टरों को दिखाना, जो भी खर्चा हो करना, जिस समय मर्जी, जितना समय मर्जी, जितने दिन मर्जी, फिर उनका बिजनेस बंद, बिजनेस सेकेंड डायमेंशन, तो वह उनकी भक्तों की केयर जब वो बीमार होती है, ऐसा भी होता है। हम इसे उदाहरण बता रहे हैं, हम सिर्फ आपके लाभ हेतु ये बता रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप लाभ ले सकते हैं, यदि आप नहीं चाहें तो भी आप हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र तो कर ही रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इतने उच्च कोटि के नित्यान प्रभु के कृपा के अवतार है, आविष्कार कहा जाता है हमको। मैं अपने गुरुदेव श्रीला लोकनाथ गोस्वामी का मन लैट्रिन साफ करते थे रोज, इतने लंबे समय तक रोज लैट्रिन साफ करते, वो जगह साफ करते अच्छे से ताकि गुरुदेव वहां के लैट्रिन कर सके। ये तो बेसिक सेवा होती है। अगर कोई बगीचा होता है ठाकुर जी का तो रोज उसमें पानी देना या उसकी टेक केयर करना, ये भी होता है। और शिवानंद सेन नाम करके महाप्रभु के पार्षद हुए हैं जो ब्रज में वीरा सखी हैं, वह महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आ गए थे संन्यास के उपरांत, तो 200 भक्तों को नवद्वीप से लेके आते थे हर वर्ष जगन्नाथपुरी। तो सारा जैसे हमारे यहां भी कुछ भक्त लोग खर्चा करते हैं ट्रेन का, कोई रहने का, कोई भोजन का इत्यादि, तो शिवानंद सेन सारा खर्चा जो है पूरे ट्रिप का टैक्स देना, टोल टैक्स होना, नाव का देना, खाना पीना जो भी खर्चा होता था पूरा वह करते थे, इससे वे अतिशय कृपा के प्राप्त होते। तो यहां जो भक्त की सेवा कर रहे हैं उन्हें जाने अनजाने में शिवानंद सेन की कृपा प्राप्त है। शिवानंद सेन उन पर ऐसी कृपा करते रहे, हम ये प्रार्थना भी करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अतिशय सेवा संपन्न होती है, और जो गुरुदेव की बेसिक सेवा होती है वो विष्णु बाबा जी महाराज पेज नंबर 13 पे बता रहे हैं। तो क्या है कि देखिए, श्री गुरुदेव की श्रीअंग सेवा बहुत भाग्य से प्राप्त होती है, जिनको प्राप्त हो उनके तो कहना ही क्या। तो गुरुदेव के पास स्नान के लिए जल स्वयं लेके आता है, और उनके चरण संवाहन करना, उनका अंग मार्जन करना, नहलाना, चंदन आदि लगाना, वस्त्र धोना, ये सब साधक स्वयं करते हैं। स्वयं करने का चेष्टा करनी चाहिए, स्वयं करने की बहुत प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए। गुरुदेव के वस्त्र धोना, उनके लिए जल लेके आना, ठाकुर जी को भोजन निवेदित करके उनको अन्न देना, पेय देना, और जब गुरुदेव दिखे साष्टांग प्रणाम करना, जब गुरुदेव पूजा करने के लिए जाएं तो उनके लिए चंदन घिस के रखना, तुलसी तोड़ के रखना, पुष्प लेके आना, और यदि उनका नाम लेना ही पड़े तो हाथ जोड़ के बहुत लेना पड़ता है, श्री श्री 108 करके नाम, सीधा नाम नहीं लेना चाहिए गुरुदेव को, श्री श्री 108 करके उनका नाम लेना, और अपने धन देह घर प्राण आदि द्वारा सभी प्रकार से गुरुदेव का संतोष विधान करेगा। तो साधक का इस प्रकार से चेष्टा रहती है। गुरुदेव कृष्ण की सेवा, उनके भोजन की सेवा, उनके जल की सेवा, स्नान के जल की सेवा, ये जिसको भी प्राप्त होती है वह भी भाग्यवान होते हैं। और जो वास्तव में कर्म में तो जो भी सेवा है वो सारी हमारी ही सेवा है वास्तव में देखा जाए, चाहे वो अर्चन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे पुस्तक लेखन हो, चाहे पेंटिंग हो, जो कर रहे हैं वह सब जानते हैं, सभी हमारी ही सेवा है। किसी भी चीज में यदि कोई इन्वॉल्व है तो हमारी ही सेवा कर रहे हैं। अब ये ग्रंथ है ये हमें भी आज ही प्राप्त हुआ, आज ही प्राप्त हुआ। कितने भक्त लोगों ने इसमें सेवा करा, इन्होंने लिखा, किन्होंने टाइप किया, कोई प्रिंटर के पास गए, चेकिंग करी, आर्ट इलस्ट्रेशन बनाए, किसने धन दिया इनके छपने के लिए, और किसी एक महानुभाव कृपा से हमें भी ये ग्रंथ आज ही प्राप्त किया। परंतु ये ग्रंथ काफी भक्तों को आज प्राप्त हुआ, परंतु इसकी जो प्रथम प्रिंट है, जो पहला प्रिंट है, वो एक भक्त है बॉम्बे की, उनको पहले प्राप्त हो गया। हमारी इच्छा से हमने चाहा था उनको प्राप्त हो जाए, तो हमारे प्राप्त हमारे को मिलने से पहले आज हमें ये मिला है, थोड़ी देर पहले हमारे से भी पहले एक भक्त को प्राप्त हो गया, तो अति भाग्यशाली। महाराज ग्रंथों से समझ पाए होंगे, ग्राम क्रोध से छूटना हो या भगवान के लिए प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न करना हो, स्वस्वरूप का जागरण करना हो इत्यादि इत्यादि, ये सब स्वयं के प्रयास से नहीं, स्वयं का प्रयास भी अच्छे से करें और अतिशय सेवा संपन्न करेंगे तो हमें तो हम वो भजन कर पाएंगे जिस भजन से सिद्धि प्राप्त हो। हमें मूलतः ये बात समझ नहीं, हम अच्छे से समझ पाए कि घर जो है गड्ढा और खाई है, ये घर आप समझ सकते हैं, तो क्या हमारे हृदय में ये बात जम गई है, बैठ गई है, बैठ गई है, नहीं बैठी तो क्या हम रोए इस बात के लिए कि मेरे अंदर बैठ जाए। हमारा घर तो निकुंज है, हम उस देश के वासी हैं, वहां उस देश के, यहां के संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। क्या हमें वास्तव में कॉन्फिडेंस रियलाइजेशन है कि ऑल थॉट्स आर गार्बेज, नहीं है? क्या हमने मनन किया सफिशियंट इसका? यदि मनन करेंगे और पिता का आश्रय लेके मनन करेंगे, और जब हमें समझ आएगा कि ऑल थॉट्स आर गार्बेज, जब तक ये समझ नहीं आएगा क्या हम भक्ति के पथ में जा सकते हैं आगे? हम तो इसी में ही पड़े रहेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, पत्नी को बोलते रहेंगे, बच्चों को ये करो, वो थॉट्स में गार्बेज रहेंगे। कि हमें तो अपनी छोटी छोटी बातें भी रहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट वही बातें ब्रह्मांड में। और जो लेडीज हैं, हमने जैसे पिछले बारी लोक के सत्र में बताया था कि हम काफी कोई बताना चाहते नहीं बता पाए, तो स्त्रीपना, आपको पता है स्त्रीपना दूर होना तो बहुत दूर की बात है, स्त्रीपना के जो बिल्डिंगे हैं उसका एक फ्लोर भी टूटना बहुत बड़ी बात है। इसी पना में माँ पना, बहू पना, पति पना, कितने पना आती है, और ये सब एक एक पना एक एक बुर्ज खलीफे से भी बड़े हैं, अनेकों फ्लोर नीचे, अनेकों फ्लोर ऊपर। आपको उदाहरण दे दें, जैसे आपका बच्चा एक भक्त है, पति पत्नी है, रशियन है वो लेडी, ब्रज में ही रहती है, उनका छोटा बच्चा 6-8 साल का, उन्होंने बोला वो बच्चों बेटा तुम पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गुरु जी की सेवा करो, अच्छे से भजन करो, आरती करो, सुबह कीर्तन किया करो, शाम कीर्तन किया करो, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हम अपने बच्चे के लिए कामना कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे का इस स्कूल में उस स्कूल में एडमिशन होगा तो ही हमें खराब लग जाएगा। तो क्या ये भक्ति निशानी है कि स्कूल में एडमिशन हुआ खराब हो गया, लगना शुरू हो गया? किस हद तक माँ पना हमारे हृदय में जमा पड़ा है? ये कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा तो ये स्कूल में, ये कॉलेज में नहीं, वो एडमिशन, डॉक्टरी करें, इंजीनियरिंग ना करें, इसी बात पे बोल गया। तो इस एक एक इमारत को भी तोड़ना है तो बहुत गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय लेना पड़ेगा, स्वयं से नहीं होगा, इतने सालों से नहीं हुआ, आने वाले सालों में भी नहीं होगा। क्या हम खुशी से होंगे कि हमारे पुत्र या पुत्री के साथ भक्ति करें, भजन में रहें, सुबह शाम आरती करें और भगवान के विशुद्ध भक्त बने? हमें ये सुनी हुई है बात गीता में और कितनी बारी, माई बिगेस्ट एनिमी इज माइंड, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मेरा मन ही मेरा एकमात्र दुश्मन है। क्या हमें ये रियलाइज है बात? क्या हम रोए कर इस बात को क्योंकि हमने भीख मांगी है एक गुरुदेव की? हम तो इतने बिजी अपने आप को रखे हुए संसार में कि विचार भी नहीं आ रहे कि इन बातों की तो जरूरत भी है हमारे जीवन में। मेटीरियल माइंड आप समझिए, आई डोंट नीड मेटीरियल माइंड, मुझे मेटीरियल माइंड चाहिए ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे मेटीरियल माइंड क्या करेगा, क्या देगा मुझे मेटीरियल माइंड? और हम मेटीरियल माइंड को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, वो मैटर है, जड़ है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे माइंड चाहिए ताकि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। मेटीरियल माइंड तो चाहिए ही नहीं, मेटीरियल तो चाहिए ही नहीं, मुझे मेटीरियल माइंड ही मेरा एकमात्र दुश्मन है। ये तभी समझ आएगा जब समझेंगे हम कि मुझे मेटीरियल माइंड चाहिए ही नहीं, आत्मा को मेटीरियल कुछ भी नहीं चाहिए तो मेटीरियल माइंड कैसे चाहिए होगा? बुद्धि चाहिए हाँ, कौन सी किसे ठाकुर जी की सेवा हो, मन चाहिए हाँ, कौन सा किसे ठाकुर जी की सेवा हो, वो तदामी होता है, वो कृपा से प्राप्त होता है। जो ये प्राप्त हुआ है तो दुश्मन प्राप्त हुआ है, दिन रात का दुश्मन चिपका बैठा है हमारे पिशाची। बाबा जी हमारे यही ग्रंथ में बता रहे हैं 77 पेज के आसपास कि पिशाची है, ऐसा होता है कि भूत, पिशाची मतलब भूत, जब भूत चढ़ जाता है ना तो व्यक्ति खुद से खुद की तरह नहीं बोलता, हम खुद क्या है राधा रानी की दासी, फिर वो वैसा व्यवहार नहीं करते, वो पिशाच भूतनी की तरह व्यवहार करते, मैं तो माँ हूं, लेडीज को देखो मैं बहू हूं, माँ हूं, पत्नी हूं, तो पिशाची भूतनी घुसी हुई अंदर, तो इस पिशाची से रक्षा पाने का भी आप उपाय देखें। बाबा जी के शब्दों में, नरोत्तमदास स्वामी के शब्दों में, गले फांस लीते फिरे माया से पिशाची, ये इसी के अंदर है 3 रुपए पाई को सेवा में। पिशाच आदिष्ट जो होता है वो बिल्कुल भूत की तरह ही कार्य करता है, जो भूत बोल रहा है वही वो कर रहा है, जैसे मां रूपी भूत जो बोल रहा है वही इस कार्य कर रहा है स्त्री शरीर के साथ, जबकि पता है मैं कण हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति छोड़ो मैं तो मां बन गई, सोचे एक आत्मा मां बन गई, इससे बड़ी शोक शोक की बात हो सकती है। और इस पिशाची से दूर कैसे जाएंगे, कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं इस पिशाची से दूर? साधु महात्मा ही इस पिशाची से मुक्ति दिलाने वाले वैद्य हैं। भ्रमते भ्रमते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमण करते 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 यदि साधु वैद्य मिल जाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची पालाए, उनके उपदेश से उनके मंत्र से ये पिशाची भूतनी जाएगी, ये भूतनी नहीं जाएगी, मां रूपी भूतनी, पता है भूतनी नहीं जाएगी आपके जीवन से, बहू रूपी भूतनी कैसे जाएगी? तार उपदेश मंत्र, उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव वैष्णव जन, मंत्र दे रहे हैं तभी पिशाची जाएगी। अच्छे से समझ लो, बच्चे स्कूल में एडमिशन लेना और ये सब करना तो इसी में हम लोग खुशी और दुखी हो जाते हैं। यदि आपके दो बेटे हो, एक का नाम हो मोदी और एक का नाम हो अमिताभ बच्चन, तो भी अगर आप वास्तव में भक्त हो, वास्तव में भक्त हो, आपके अंदर हर सुख की विकार नहीं आएगा, खुशी का सुख का विकार नहीं आएगा, ये सुख है ना संसार, ये विकार है आत्मा के, ये वास्तव में खुशी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मोदी बन गया या अमिताभ बच्चन बन गया तो उसमें जब उसमें उसी को कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? यदि आपके बेटे हो, वो भी तो आत्मा है, आत्मा को एक मनुष्य के किसी कार्य से कुछ नहीं मिलने वाला, तो जब उसको मोदी कार्य से उस आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, अमिताभ बच्चन के कार्य से उस आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, तो इस आत्मा को कैसे मिलेगा जो उसकी शरीर की मां है? यदि आप भक्त हो और आपके बेटे मोदी और अमिताभ बच्चन, तो भी आपके हर शुभ विकार नहीं आना चाहिए। यदि आप भक्त बस संसारी को तो आपको छोटे स्कूल में एडमिशन से भी विकार आ जाएगा, खुश हो जाओगे, स्प्रिंग डेज है, वो बाल भारती है और डीपीएस है, इसी से खुश हो जाओगे, प्राइम मिनिस्टर, ये तो बड़े दूर की बातें हैं। ये तो पूरा दिन ही बोलते रहोगे मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर। ये भक्त के लिए तो ये सब गार्बेज है, ऑल थॉट्स आर गार्बेज इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है ना, आई एम एस ओ एल ई। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत मेहनत की तो बहुत आवश्यकता है, परंतु यदि गुरु ने प्राण हो, गुरु ने साधक हो, तो चाहे मृत्यु की शैया पे भी हो, तो यदि चाहे कोविड हुआ हो, चाहे कोई भी बीमारी हुई हो, क्योंकि गुरुदेव तो व्याप्त हैं सब जगह, व्याखंड मंडलाकार व्याप्तम ये चराचरम, तो गुरुदेव सब जगह व्याप्त है। वो हॉस्पिटल में आगे वहां पर हृदय में भी हाथ रख देंगे, सिर पे हाथ रख देंगे अपने एक रूप में आगे और बोलेंगे देखो निकुंज दिखा, तो राधा कृष्ण को दिखेंगे और सब कुछ दिख जाएगा बिना योग्यता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं सेवा से। इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कि गुरु और वैष्णव हृदय से प्रसन्न हो, तो हम किसी भी अवस्था में हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। होना ये जैसे क्या हमने अपना सर्वस्व लगाया है सेवा में, और जैसे लीला चिंतन है हम करने का प्रयास करते हैं, एक होता लीला चिंतन करना और एक होता लीला चिंतन होना, हम कोशिश करते हैं राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करने का, चिंतन करने का, तो प्रयास करते हैं, थोड़ा होता है फिर नहीं होता, तो जब कृपा होगी तो वो चिंतन होने लगेगा, वो लीला में रुचि आने लगेगी, वो लीला में रस आने लगेगा, धीरे धीरे वो लीला हमारे हृदय में स्थायी रूप से घर कर देगी, परिपक्वता होगी, तो धीरे धीरे फिर स्फूर्ति होगी। वही लीला के लिए हम धीरे धीरे थोड़ा सा सोचें तो कैसे होगा, वो जो पेट्रोल है वो हमारे हृदय में घर करने का, वो कृपा से प्राप्त होगा। तो कई बार ऐसे भी होगा, गुरुदेव किसी भी लीला में है और किसी भी कारणवश हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि हो गई, तो जिस लीला में वो है बिना वो लीला का चिंतन उस लीला चित्त में आप पहुंचे, ये भी होता है। और ये होता है सबके लिए नहीं है, जिसने वास्तव में अपने गुरु को अपना प्राण माना हो, ये मेरे प्राण है, ये उनके साथ होता है। और इसीलिए नरोत्तम दास को कहते भी हैं साधु कृपा बिना आर ना ही उपाय, साधु कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं, जो होगा साधु की कृपा से ही होगा। इसलिए ठाकुर महाशय कहते हैं जीवार उचित नहीं श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने, जीना मेरा उचित नहीं है श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा के बिना, मेरा जीना ही उचित नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि जी के क्या करूंगा जब इस देह से श्री गुरु और श्री वैष्णव सेवा ही नहीं बन पाई, तो जीने का क्या लाभ। यही ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि रूपे पाई वो सेवा वो ही दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति ना हो लो आम, किस रूप से मुझे सेवा प्राप्त होगी राधा कृष्ण की, जब मुझे श्री गुरु और श्री वैष्णव के चरणों में रति नहीं हुई, उनकी सेवा में रति ही नहीं हुई, तो कैसे मुझे राधा कृष्ण की सेवा मिली। बता रहे हैं आचार्य, बता रहे हैं कि तरीका क्या है, वास्तव में व्यास पूजा क्या होती है, व्यास पूजा तो रोज होती है, हमने जाना कि हम कुछ खा नहीं सकते, पर क्या खाने से आसक्ति हटी, हम स्पर्श नहीं कर सकते, क्या काम वासना से हमारा पीछा छूटा। हमने देखा इस विषय में चर्चा भी नहीं करी स्पर्श सुख के बारे में, किसने उस तरीके से जिससे कि हमारा स्पर्श सुख की वासना शून्य हो सके, तो जिस विषय में चर्चा ही नहीं हुई वो शून्य कैसे होगा। और क्या कृपा की याचना करी कि भी किसी ने कि हाँ कि हमारा ये स्पर्श सुख की वासना शून्य हो, मैं अच्छे समझ पाऊं कि मैं भोजन नहीं कर सकता, इसके लिए हमारे को भीख मांगनी पड़ेगी, अतिशय सेवा करें और रोज प्रार्थना करें, एक बार करुणा करो, दिन में एक भजन तो होना ही होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव के चरण कमलों में उनसे कृपा जागरण करने के लिए होना ही होना चाहिए। और किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, वैष्णव नाम विष्णुवत सेविया, जो वैष्णव है वो विष्णु के समान है, किस रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। वैष्णव का संग मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। जो मंजरी भाव के साधक है इस विश्व के सबसे ऊंचे साधक है। आप सिद्ध छोड़ो जो स्वतंत्र आचरण नहीं करता, जैसे हमने बताया जाए धाम जाओ चाहे कहीं भी जाओ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली शायद कोई मिल जाए कि जो गुरु वैष्णव का आश्रय लेके भक्ति करते हैं, अदरवाइज सब स्वतंत्र आचरण आपको दिखने में मिलेगा। तो साधक तो छोड़ो, सिद्ध भक्त हैं ठाकुर जी महाराज और गया प्रसाद पंडित जी, वो कहते हैं जो साधक है वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा, जो स्वतंत्र है वो कभी साधक नहीं होगा। तो स्वतंत्र आचरण की मैं जहां जाऊं जो मर्जी करूं, मेरे पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब मन आएगा वही करूंगा, जहां मन आएगा वहीं जाऊंगा, इस व्यक्ति को साधक नहीं कहते, इसे मूर्ख कहते। जो वास्तविक साधक होते उसे पता है मेरे लिए तो सब कुछ मेरे गुरु और मेरे श्री वैष्णव का आज्ञा पालन है, उनकी कृपा है। वास्तविक साधक सिर्फ ये जानता है कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरुदेव, उनकी सेवा से ही मेरा सब कुछ होगा। तो साधक इसलिए कभी स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए उसका इधर उधर घूमने ढोलने की कोई इच्छा नहीं करती। तो जो भी व्यक्ति करे ये सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जानना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये मेरे एक्शन से क्या श्री गुरु श्री वैष्णव प्रसन्न होंगे। यदि मेरे गुरुदेव इस समय उपस्थित होते तो क्या मेरा आचरण प्रति वैसा ही होगा जो मैं अभी कर रहा हूं, ये हमें मूल्यांकन करना चाहिए। इससे क्या होगा लाभ, एक तो मेरा आचरण सही रहेगा, दूसरा हम अपने गुरु की उपस्थिति का अनुभव निर्धारित कर सकेंगे। हमको करना ही चाहिए, गुरुदेव इज वॉकिंग इन माई हार्ट, ये हमारे सब साधकों का प्रयास होना चाहिए, हर समय अनुभव करें गुरुदेव मेरे हृदय में हैं और हर समय हैं। तो क्या मेरा आचरण वैसा ही है जब मेरे गुरुदेव की उपस्थित होने पे होता, यदि नहीं है तो कैसे वो गुरुदेव को प्रसन्नता देगा वो मेरा आचरण। हम जो कपड़े पहन रहे हैं क्या यदि गुरुदेव समक्ष होते क्या हम कभी वही कपड़े पहनते, यदि नहीं तो कैसे गुरुदेव को प्रसन्नता देगा ये मेरा आचरण। जो मैसेज कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी करते हैं, कोई बात पूछते हैं किसी भक्त से, तो सोचे कि यदि गुरुदेव ने पढ़ा होता तो उनको कैसा लगता, या गुरुदेव बात जाती। देखिए बिना आश्रय ग्रहण करे जो भक्ति श्रवण कीर्तन करते हैं तो श्रवण तो कर सकते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण करना अलग बात होती है, श्रवण करना अलग बात है। यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं वह तो कृपा से ही संभव है। हमारी रुचि हो जाए सोने में खाने में, और रुचि हो जाए ग्रंथों में नाम में, ये कृपा से होगी। ये तो इतने सालों की क्रिया है, रुचि खाने में और सोने में होती है, वो ग्रंथों में और नाम में नहीं होती। जो ग्रंथ जिनमें जिनकी रुचि है उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी, जिनकी नाम में रुचि की सेवा करें तो हमारे अंदर भी नाम रुचि उत्पन्न होगी। कभी कोशिश करना चाहिए कि आज मैं 8 से 10 घंटे ये अमुक सेवा करूंगा, या 8 से 10 घंटे सेवा नहीं है, कोविड के समय सेवा नहीं है तो मैं ग्रंथ पढ़ूंगा। इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब हमारे सीनियर या मेंटर हमें करेक्शन देते हैं तो मैं कुछ अपने तर्क वितर्क देता हूं कि बड़े विनम्रता से एक्सेप्ट करता हूं, आई एम सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। इस आचरण से वैष्णव प्रसन्न होते हैं, नहीं तो कहते हैं दूर रहोगे तो आर्गुमेंट करेंगे तो कैसे कृपा मिलेगी। जिस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं, धड़क प्रणाम माता जी या धड़क प्रणाम दादा या महाराज, जो भी जो हमारी वास्तविक विनम्रता होती है वो छूती है, तो बड़े वास्तविकता से प्रणाम करें, वास्तविकता से नमन हो गए, कृत्य हो गया, दर्शन कर दिए। जैसे ही राष्ट्र के पट से पहला नमन आपको होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए, तो यदि हाथ जोड़ के नमस्ते हो नहीं प्रणाम, तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरा जब करेगा तब करेगा। कभी भूले नहीं, बड़े भाग पाई सत्संगा, थोड़े भाग के बाद तो सत्संग प्राप्त होता, हमें तो सत्संग नहीं भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उसके बाद उसके भक्तों की सेवा तो कितने भाग्य से मिली है। जब किसी भक्ति को सेवा मिल जाए, गुरुजनों के दर्शन को सेवा मिले तो भाग में लाने चाहिए, हृदय ना छुटना चाहिए। मेरे त्राण करता कोई तो आए, ये तो मैं स्वयं से तो मेरे लिए संभव नहीं है। यदि गुरुदेव के प्रति अविश्वास हो जाए या कृतज्ञता फट जाए तो ऐसा अपराध संचित होता है कि भजन मृत प्राय हो जाता है। ये बाबा जी बता रहे हैं मृत प्राय भजन हो जाता है, डेड। और जो ब्रह्मचारी हैं, जो मैरिड नहीं है या ब्रह्मचारी हैं, यदि वे तन मन धन पूर्ण रूप से गुरुदेव पर समर्पण ही नहीं है तो ये समझ लो कि गलत दिशा में ही जा रहे। माइंड बॉडी वर्ड्स गुरुदेव को समर्पण ही नहीं है तो मनमाना आचरण हो तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाए। तो मूल्यांकन करवाया अपने वरिष्ठ भक्तों से, क्या मेरा माइंड बॉडी वर्ड्स गुरुदेव की प्रीति के लिए चल रहा है? यदि नहीं तो निश्चित रूप से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। है तो गृहस्थों के लिए भी पर ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष है। गृहस्थ भक्ति जो वास्तव में आश्रित हैं, शरणागत हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि माइंड बॉडी और वर्ड से मुझे जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं क्या बदलाव करूं कि मैं जो वास्तव में आपको आश्रित हो सकूं। यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रित हो सकता है तो अब तो मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं अब तो गृहस्थ हूं, तो मैं फिर भी वैसे ही किस रूप से आपके आश्रित हो सकता हूं कि वैसे ही कृपा मुझे भी प्राप्त हो, वैसी कृपा प्राप्त हो सकती है गृहस्थों। आपने पिछले चरित्र में सुना होगा श्रीधर श्रीधरानी के चरित्र में, वो गृहस्थ नहीं थे, उन्हें उनके पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। और संस्था में रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है, आपको ओपन सीक्रेट बताएं, जो गुरुदेव की अनुपस्थिति में गुरुदेव की एक्सेस में भी वैसे ही आचरण करते हैं जैसे गुरुदेव प्रेजेंट कि सब लोग भक्त लोग देख रहे होते हैं हमारा आचरण, जितनी भी सेवा कर रहे हैं, यदि हमारा आचरण वैसा नहीं है जो गुरुदेव के सामने होता है, लाउड लाफिंग, लॉर्डिंग ओवर, चिल्लाना या कुछ भी करना, तो हम कितनी भी सेवा करने संस्था में रिस्पेक्ट नहीं होती। ओपन सीक्रेट है, तो जो चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट अगर भी हो तो भी आचरण जो होना चाहिए वैसे मुझे गुरुदेव प्रेजेंट हो जैसे हमेशा, इससे हम भक्ति हमेशा उन्नत भी होते हैं कि हम हमेशा अपने गुरु का उपस्थिति का अनुभव करेंगे, वो खुश भी रहेंगे। और यदि हम सेवा से प्रसन्न करना चाहते हैं श्री गुरु और श्री वैष्णव को, विशेषकर श्री वैष्णव को, तो कभी उनसे कभी सेवा की आकांक्षा ना करें, ये मेरे को घर से पिक कर लेंगे या मुझे छोड़ देंगे वापस, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, स्वप्न में कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम प्लान करें कि जो मैं अभी जिस प्रकार से सेवा करता हूं श्री गुरु श्री वैष्णव की भगवान की, तो ये मेरी सामान्य सेवा है, यदि मैं इसको 10% ऊपर करूंगा तो क्या होगा, लिखित में करें, और अगर 50% ऊपर करूंगा तो क्या होगा, और यदि मैं इसे अतिशय करूंगा फिर कैसे होगा, तो खुद देखें ना, अतिशय पे तो बाद में करेंगे, इंक्रीज तो करेगा व्यक्ति अपने स्तर को, तो ही तो उत्तर व्यवस्था में किसी एक दिन पहुंचेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अतिशय सेवा एक दिन में करे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर स्तर को बढ़ाए तो सही, और वो लिखित में कर, ये सब मनन करने से होगा, एकांत में जाके मंत्र में किस प्रकार से इतने सालों से सेवा करें, क्या इसी को अतिशय सेवा कहते हैं क्या, यदि नहीं तो फिर अतिशय करने का मतलब, अतिशय मतलब हद से ज्यादा, जैसे श्रीधर श्रीधरानी की, या निर्णय लेके सेंटर हो तो मैं ऐसे करूं, या कोविड खत्म होगा तो मैं ऐसे कुकिंग करूं, तो कुकिंग का सबको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करनी ही चाहिए। कोई सेवा हो तो हाँ हम अपनी कार लेके जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे भक्तों मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं और उनको बिजी होते हैं तो रिप्लाई नहीं करते भक्तों, ये तो बहुत अपमान की बात है। आपको एक सिद्ध भक्त या जिसकी सिद्धि इस जीवन में होने वाली है या आपके बहुत उन्नत भक्त भी हो, वो तो हमें मैसेज कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, हम रिप्लाई भी नहीं करते, जिससे कृपा प्राप्त होगी तो कृपा का अनादर कर रहे हैं। तो तुरंत यदि घसलों सब काम छोड़ के कॉल उठाना चाहिए, यदि नहीं उठा पाते तो क्षमा याचना करते हुए मैसेज करें कि मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाया, मैं कृपया आप आज्ञा करें आप कब कॉल कर सकते। वो देख कोई कॉल मैसेज अगर रिप्लाई ही नहीं, तो आश्चर्य होता है कि मतलब जो राधा रानी की कृपा की मूर्ति चलते फिरते वैष्णव समझ नहीं पा रहे किसका संग प्राप्त हो। ये राधा रानी की कृपा की मूर्तियां आपके चारों ओर घूम रही है, समझो समझो, अरे बच्चों समझो, ये होने वाले निकुंजवासी ये आपके चतुर ओर घूम रहे, आपसे फोन करते हैं, आपसे बात करते हैं, कितनी कृपा हो रही है आप क्यों करें। आज हम सत्र का प्रारंभ पता कैसे करना चाह रहे थे कि हमने सोचा बोले कि आज सब भक्तों का स्वागत है, सब लंदन अमेरिका सब फिलीपींस वगैरह से स्वागत भी हम क्यों बोले, क्योंकि स्वागत तो हम कर रहे हैं, पर स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी कृपा हो चुकी है, आप इस बात को केवल समझ जाए, आप कृपा को स्वीकार कर लें, बस यही है, कृपा तो आपके हो चुकी है। अरे और क्या कृपा होगी, राधा कृष्ण को निकुंज के रूप में भोग अर्पण करते हो रोज, उनकी निकुंज संबंधित ग्रंथ पढ़ते हो, राजा प्रिया धीमही से आपकी दीक्षा हुआ, और आपका और कौन सी कृपा होती है, कृपा तो बहुत हो चुकी है, और स्वीकार कर ले। मैसेज आए तो आदर करें बहुत किसी का कि हाँ अरे ये तो राधा रानी की प्रिय इनकी का मेरे को मैसेज या फोन आया है, तो मैं तुरंत रिप्लाई तुरंत बात करूं, सब छोड़ के नहीं कर सकता तो फटाफट करूं, फटाफट मैसेज क्षमा याचना करूं। यदि नहीं करे तो राधा कृष्ण नहीं देख रहे आप हमारा, हम किस प्रकार से वैष्णव को श्री वैष्णव को ले रहे हैं, और संग केवल उन्हीं का ही करें जिससे हमारी गुरु भक्ति गुरु चरण आश्रय पुष्ट हो। और जीव गोस्वामी पाल एक जगह बताते हैं जिस घर में वैष्णव नहीं आते वह शमशान घाट के समान, जिस घर में आके वैष्णव के चरण से धूली से थोड़ा कीचड़ नहीं मचता, कीचड़ मतलब थोड़ा पांव नहीं धोते या मतलब हाथ पांव मतलब कुछ देर विचरण नहीं करते आते नहीं जिस घर पे, वो जो घर है वो एक शमशान घाट के तुल्य है। तो हमारे घरों में वैष्णव आए, कोविड में नहीं, कोविड को छोड़ दो, उसके बाद कोशिश करें भीख मांगे किसी प्रकार से चरण डाल दें वैष्णव, मेरा घर पावन कर दे, मेरा देह पावन कर दे। केवल शब्द नहीं होते, उस शब्द के साथ और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते। ये नहीं को कार्य करने में सफलता हो या विफलता हो, हमने कार्य किया बस उसी से श्री हरि की प्रसन्नता हो जाती है। सेवा का कार्य है कि मैं श्री गुरु और श्री वैष्णव सेवा करूं, यह तब हम हृदय से कर पाएंगे जब हमारे अंदर ये पूर्ण कन्विक्शन होगी कि मैं दास अनुदास अनुदास हूं। महाप्रभु ने क्या बोला, वो फिर भरपुर पद का मनोवर दास अनुदास, भगवान के दासों के दासों का दास हूं, जब यह पूर्ण कन्विक्शन होगी कि मैं दास हूं तो ही हम दास की भांति से अच्छा सेवा कौन करता है, दास। तो क्या मैं हृदय से मानता हूं मैं दास हूं, अपने आप से पूछो, एकांत में पूछो, मनन करें, क्या मैं हृदय से मानता हूं मैं दास हूं, जब मैं दास मानते ही तो सेवा कैसे करूंगा दास की तरह। तो गंभीर मनन करना एक एक विषय पे आवश्यक है, मनन करें मैं दास हूं, और दास ही नहीं हूं मैं केवल, जैसे हमने देखा पिछले जन्माष्टमी कार्तिक में बताया था कि मैं पार्टिकल ऑफ सर्विस हूं, एक कण तो हूं, आत्मा क्या है कण है, कण क्या है पार्टिकल ऑफ सर्विस है, तो पार्टिकल ऑफ सर्विस जो है सेवा करना ऑप्शन नहीं है। बोलो मैं क्यों करूं वैष्णव गुरु की सेवा, मैं अपने मन से करूंगा, जब आप ये बोलो तब भी अपने मन की सेवा कर दे, अपना मन भी नहीं है, वो मन है। मन मतलब एक मटीरियल, जड़ सॉफ्टवेयर, उसकी सेवा कर रहे हो। अब जड़ जो सॉफ्टवेयर है आपको कोई दे नहीं सकता, जैसे ये तो चिन्ह में है, परंतु और कोई लकड़ी का बैठा हो तो ये आपको कुछ नहीं दे सकती, लकड़ी या खंभा या कुछ। जैसे खंभा लकड़ी आपको कुछ नहीं दे सकती, वैसे ही मटीरियल मन आपको कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, जड़ डेड होता है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आप भले इसको काला पेंट, सफेद पेंट कुछ भी कर दो, उसी प्रकार से जड़ मन की कुछ की सेवा कर दो, वो केवल जड़ता की सेवा है। जड़ता की सेवा आपको मिलना कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी सेवा। महाप्रसाद क्या होगा? जड़ की सेवा करने का फ्रस्ट्रेशन। और जब आप वैष्णव की और हरि की सेवा और गुरु की सेवा करोगे, उससे आपको कृपा मिलेगी, जिससे आपको स्वस्वरूप का जागरण होगा। यही तो सदस्य गणित है। इसलिए मैं पार्टिकल और सर्विस को सर्विस एक क्षण भी करे बिना मैं नहीं रह सकता, और सही जगह वैष्णवों की और गुरु की सेवा करूंगा तो कृपा प्राप्त होगी, इससे मेरा स्वस्वरूप का जागरण होगा। इसी भावना जब हमारा कन्विक्शन विदाउट अ डाउट दृढ़ होगी कि मैं पार्टिकल हूं, मैं पार्टिकल और सर्विस हूं, मैं दास हूं, तो मैं नेचुरली सही जगह पे सेवा करूंगा। जब ये कन्विक्शन ही दृढ़ नहीं है, ना भगवान आनंद है, ना मैं दास हूं, किसी जगह कन्विक्शन दे नहीं, तो भक्ति कैसे दृढ़ होगी? इस सब चीजों पे गंभीर मनन करना है, और गंभीर मनन भी कृपा का आश्रय लेके होगा। जब मनन पे जाए, श्री गुरु को प्रणाम करें, वैष्णव को प्रणाम करें, भीख मांगे कि मैं सही रूप से मनन कर सकूं। कोई कहता है मैं इससे 2-4 घंटे मनन नहीं होता, हम कह रहे हैं आपसे 200 साल मनन कर दो, वो भी कम है। यदि आपने एक चीज का मनन भी सही रूप से कर लिया, गुरु वैष्णव का आश्रय लेकिन विश्वास मानी एक चीज का, आपका कल्याण होगा। तो कृपा का आश्रय लेके मनन करें, और डीप कन्विक्शन हो कि मैं दास हूं, पार्टिकल ऑफ सर्विस हूं, ऑप्शन नहीं है, मैं हमेशा ही हमेशा सेवा कर रहा हूं, और वही डेड मैटर है, मटेरियल माइंड हो, चाहे खंभा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुर्सी हो, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, वो चिन्मय आत्मा के साथ, वो चिन्मय आत्मा तो हरि गुरु वैष्णव ही रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। मुझे कन्विक्शन क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, क्या होगा ही मेरा कल्याण इसी से, तो कोई ना एक भी क्षण अपना वेस्ट क्यों करूंगा? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। हमारी तो एक ही कन्विक्शन, ये गौरांग महाप्रभु जो कि साक्षात श्री श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण को छोड़ के महाप्रभु नहीं है, वो बोल रहे मैं दास अनुदास अनुदास। जब महाप्रभु दास अनुदास अनुदास है तो हम क्या है? हम दास अनुदास अनुदास हैं, ये हमारा कन्विक्शन दृढ़ होनी चाहिए। बोलो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? मोदी अमिताभ बच्चन नहीं, दास अनुदास। क्या हम हृदय से बोल सकते हैं, चाह सकते हैं हृदय से? अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? दास अनुदास। गुरु जी का दास नहीं, नहीं गुरु जी के दासों के दासों का दास बनाना चाहते अपने बेटे को या बेटी को। क्या हम दृढ़ निश्चय हमारा, इससे मेरा कल्याण होगा? महाप्रभु का दृढ़ निश्चय तो है कि हाँ इससे कल्याण होगा। दास अनुदास अनुदास, बाबा जी महाराज जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि दासों के दासों का दास रखने की हमारी बनने की भावना होनी चाहिए। भक्ति जो है एक गंभीर चिंतन मनन और फिर एग्जीक्यूशन का विषय है। गंभीर चिंतन मनन होगा, जय भगवान के धाम में सखा भी होंगे, सखी भी होंगे, मैनजरी सहचरी कुछ भी होंगे, कर तो भगवान की दासता और सेवा ही रहे होंगे, वहां भगवान की दासता सेवा से वंचित होना रह जाएंगे। दासता तो कंटिन्यूअस है, 24 आवर्स इटर्निटी तक है। सही जगह दासता है कि गलत जगह? प्रश्न तो सिर्फ प्रश्न तो ये नहीं कि दासता है या नहीं, मैं किसी की दासता नहीं कर रहा। जब आप बोल भी रहे हो तो भी मन की दासता कर रहे हो, क्योंकि जड़ है। किसने बोला कि मैं दासता नहीं करूंगा? आत्मा ने नहीं, किसने बोला? मटीरियल माइंड। मटीरियल माइंड तो जड़ है, तो आप जब आप जड़ की सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सेवा मतलब उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो मटीरियल माइंड ने बोला कि मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, तो हम नहीं कर रहे। तो मटेरियल अपने आप से पूछो, मटेरियल माइंड तो जड़ है, ये मुझे क्या देगा? अपने आप से पूछो और अपने आप को आंसर दो, आई डोंट नीड मटेरियल माइंड, मुझे मटेरियल माइंड नहीं चाहिए, आई ओनली नीड माइंड नॉट मटेरियल माइंड। अभी जो मेरे पास है वो मटेरियल माइंड है, मटेरियल इंटेलिजेंस है, जदामी बुद्धि वाला नहीं है,